Thank you, brother. Be seated.
आप बैठ सकते हैं। पहले तो मैं आज इतना व्यस्त था कि मैं कुछ बीमारों के बुलाहटों पर नहीं जा सका। वहाँ कुछ निज मामलों वाले लोग थे जिनके लिए प्रार्थना होनी थी, जिनसे मुझे मिलना था। परंतु अब कुछ एक दल बिली में विश्वास करता हूँ, वो कनाडा से था, दो या तीन विभिन्न स्थानों से थे। वे यहाँ आए, आप जानते हैं कि वे होटलों और मोटर वाले होटलों में इस सारे समय रुके रहे, और मैं जाकर उनसे मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, जो कि चारों ओर से समस्त संसार और एशिया, यूरोप और हर कहीं से थे। जब हम यहाँ हैं तो दिन प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, और 600 से अधिक की सूची है जो निजी साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसलिए ये एक प्रकार से कठिन सा हो गया है। परंतु वे जो वास्तव में बीमार और आपात स्थितियों में हैं, जिनके लिए प्रार्थना होनी थी, क्योंकि मैं उन लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, जब से मैं वहाँ ट्रस्टी बोर्ड के साथ छोटी सी सुनवाई पर था, यहाँ मेरे अपने ट्रस्टी बोर्ड के साथ आराधनालय में हम यहाँ कुछ क्षणों पहले मिले थे, और उस समय अवधि में लगभग एक डेढ़ घंटे के लिए कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए इस समय प्रार्थना होनी थी, बाहर था। यदि वे यहाँ हैं तो मैं उनके लिए इस समय प्रार्थना करना पसंद करूँगा। इसलिए यदि वे लोग जिनके लिए प्रार्थना होनी थी, यदि वे अभी यहाँ ऊपर आए, जब तक पियानो वादक जो भी हैं आएगा और हमें एक छोटा सा स्वर देगा, वो महान वैद्य अब समीप है, हमदर्द यीशु। अब वे जिनके लिए प्रार्थना होनी थी, यदि वे आएंगे, मैं नहीं जानता कि कितने थे, और आप भाई लोग हैं, मैं समझता हूँ। भाइयों, मैंने अपनी देह में काफी कष्ट उठाया है। यीशु ने अपनी देह में कष्ट उठाया ताकि वो सही प्रकार बिछवाई करने वाला हो, क्योंकि वो परमेश्वर होते हुए देहधारी हुआ ताकि वो कष्ट उठा सके। वो दुर्बलताओं की पीड़ाओं को अनुभव कर सकता था, और इसी कारण वो क्षतिपूर्ति करने आया, और इसी में उसने अपनी कलीसिया को प्राधिकार दिया कि उसके कार्य को निरंतर चलाए रखे। और चिकित्सकों का मैं बहुत ही आदर करता हूँ, शल्य चिकित्सा आदि आदि, उस प्रतिभा के साथ जो परमेश्वर ने उन्हें दी है कि शरीर के साथ कुछ विशेष करें, शल्य चिकित्सा करके दांत को निकाल दें जो खराब है, और आदि आदि। मैं इसकी सराहना करता हूँ, परंतु समय आता है जब उनके ज्ञान से परे चला जाता है, वे नहीं जानते कि क्या करना है, समझे? और मैं सोचता हूँ तब हमारे पास पक्का अधिकार है, जैसे कि हम प्रकृति में हैं। यदि हम अपने परिवार के डॉक्टर के पास पहुँचे, हो सकता है एक डॉक्टर कहीं दूर गांव में, कोई अच्छा पुराना डॉक्टर जो कि लालटेन लेकर रातों रात खेतों खेत जाता हो और आपको इलाज के लिए ढूंढे, और यदि वो असफल होता है तो वो अपने से किसी अधिक जानकारी वाले के पास जाएगा, वो आपको किसी विशेषज्ञ के पास भेजेगा। और अब यदि विशेषज्ञ नहीं जानता, मैं आनंदित हूँ, हमारे पास एक और स्रोत है, महान वैद्य, और वो असफल नहीं होता। ये वाला असफल नहीं होता क्योंकि वो स्वयं रचयिता है, और उसने हमारे लिए मार्ग बनाया है। अब यदि चंगाई की सामर्थ मेरे अंदर है कि इसे करूं, तो मैं वहां कर ये करूंगा, मैं इससे बहुत प्रसन्न होऊंगा। परंतु जैसे कि चंगाई की सामर्थ मेरे में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में चंगाई की सामर्थ नहीं है, परंतु हमें मसीह की ओर से प्राधिकार मिला है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जिसने पहले ही चंगाई सामर्थ के लिए भुगतान कर रखा है, समझे? जैसे कि था, हम केवल आ रहे हैं कि उस चेक पर लिख दें, और मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे, ये खाली चेक है, तुम मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे वो मैं करूँगा। क्या ही प्रतिज्ञा है, कभी असफल नहीं हो सकती। और मैंने अपने भाइयों और बहनों की इस समस्त संसार में उस जमा में से सहायता की है, या इन टिप्पणियों यीशु मसीह के लहू पर परमेश्वर के बैंक से निकाला है, और ये बहुत ही सफल रहा है। उसने सदा ही भुगतान किया है, और क्योंकि वहाँ पहले ही जमा है, देखा आपने, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। देखिए, ये हो चुका, और आज रात्रि हम आपके विश्वास के लिए प्रसन्न हैं। मैं विश्वास करता हूं, बिली मुझे बता रहा था एक भाई दूर कनाडा से आया है या कहीं और से, और क्या ये ठीक है कि आप भाई कनाडा से हैं? और भाई आप कहां से हैं? कैंडलविले इंडियाना फोर्ट वेन से। मेरा विवाह फोर्ट वेन में हुआ था, मुझे अच्छी तरह स्मरण है। वहाँ रेडिगर टैबरनेकल में बहुत सी सभाएं हुई थी। मेरा अनुमान है आप जानते होंगे ये कहाँ है। और मुझे स्मरण है एक छोटे लड़के के समान पॉल रेडर के चरणों के पास रेडिगर टैबरनेकल में बैठा करता था, एक नव युवक विद्यार्थी सेवक के समान। भाई पॉल एक महान पुरुष था और ऐसे ही भाई रेडिगर विश्वास का एक पुरुष। आज रात्रि उनके प्राण विश्राम में है। और अब जैसे कि मैं एक छोटा लड़का था, मैं उसे जो वे छोड़ गए उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो यीशु अपनी कलीसिया के लिए करने के लिए छोड़ गया है। अब अपने समस्त उस विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ। और मैं ऐसे ही अचानक से नहीं आ रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं करते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। हम ये विश्वास करते हुए कि हमने जो मांगा है उसे पाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, और हम अपने हृदय में इस आश्वासन के साथ कि मसीह ने प्रतिज्ञा की है, और आप भाइयों ने वेदी पर अपना विश्वास रखने का प्रयत्न किया है, वो सब किया है जो आप कर सकते हैं, और मैं अपना आपके साथ आज रात्रि रखने के लिए आ रहा हूँ। और अब हमारे पास एक महान वेदी है जो पूरे आकाश में फैली है, और उस वेदी पर हमारा बलिदान रखा है, परमेश्वर का पुत्र, समझे? और ये वो बहते हुए लहू का बलिदान है। परमेश्वर बिना सम्मान के उस पर दृष्टि नहीं डाल सकता। देखिए, ये उसका वचन है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। मैं हमारे एल्डर भाई नेविल से कहने जा रहा हूँ, यदि वे मेरे साथ आगे आए जैसे कि अब हम जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा आराधना ले। क्या होता यदि ये आपका भाई होता, आपका पति, आपका पुत्र, आपके पिता होते? स्मरण रहे, ये किसी के तो हैं। आइए अपनी सारी निष्कपटता से जो हम में है इन भाइयों के लिए परमेश्वर के पास चलें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, अब हम आपकी उपस्थिति में आपके अनुग्रह की वेदी के पास ला रहे हैं। यद्यपि हम एक छोटी लकड़ी की बेंच के पास खड़े हैं जैसे कि ये पृथ्वी पर थी, परंतु हमारे विश्वास ने इसे ऊपर महान जलती हुई वेदी के पास उठा दिया है, जहां यीशु परमेश्वर के सम्मुख मीठी सुगंध कलवरी पर से लहू का बलिदान दिया, जिसने हर रोग पर, हर बीमारी, मृत्यु, नरक और कब्र पर जय पाई, और फिर जीवित हो उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और उस महा महिमान के दाहिने हाथ जा बैठा। और हम विश्वास के साथ आते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में स्वयं को ऊपर उठाते हैं, इस वेदी पर ये कहने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु, हमें ग्रहण कर, जैसे कि हम प्रभु यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं। यहाँ पर हमारे भाई हैं, और उनमें से एक वहाँ ऊपर पोर्ट वेन से है, वहाँ के प्रांत से, और बाकी दूसरे कनाडा से यहाँ इस अत्यधिक पुण्य क्षण में यहाँ पर आए हैं। प्रभु, ये मृत्यु और जीवन के बीच में हैं। यहाँ दो पुरुष जो अभी युवा हैं, उनमें आपके लिए बहुत सेवा भाव है प्रभु, दो मसीही सिपाही जो आप पर विश्वास करते हैं, और शत्रु ने उन पर हथियार से वार किया है, और ये विष का हथियार उनके शरीर में कहीं लगा हुआ है, और ये वापस आए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के चिकित्सालय में फिर से जुड़ जाने के लिए, चंगाई के लिए आए हैं, ताकि वे फिर से सामने वाली पंक्ति में ढाल युक्त होकर युद्ध पे जा रहे हैं। प्रभु, वे यहाँ हमारे साथ प्रार्थना की सेना में सम्मिलित होने आए हैं, और हम शत्रु का सामना करने को जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में उन्हें स्वतंत्र कर दे। हम तुझसे यीशु मसीह के नाम में अनुरोध करते हैं, उन्हें जाने दे, वे युद्ध के योद्धा हैं। और आपके सेवक के समान मैं विश्वास से हाथों को उन पर रखने के लिए सामने जाता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हमारे प्रभु, हमारे युद्ध के महान मुख्य कप्तान ने कहा है, यदि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। ये मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। होने दे कि बीमारी की ये सामर्थ जिसने इस भाई की देह को बांध रखा है, उसे यीशु मसीह के नाम में खोल दे। बीमारी की सामर्थ जिसने भाई के शरीर को बांध रखा है, यीशु मसीह के नाम में खोल दे, ये ऐसा ही हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, अनंत जीवन के लिखने वाले, हर अच्छे वरदान के देने वाले, अपनी आशीषें इन पर जो आशीषित हैं ले आए। और पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है कि यदि तू इस पर्वत से कहे कि हिल जा और अपने हृदय में संदेह ना करे, परंतु विश्वास करे कि जो तूने कहा वो घटित हो जाएगा, तो जो तुमने कहा तुम पा सकते हो। मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी बीमारी इनके शरीर से जा चुकी है। अब ये अब इसे होने दें। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आमीन।
Does the church believe likewise?
Amen.
Then let it be done.
क्या कलीसिया भी इस प्रकार विश्वास करती है, तो इसे होने दें। अब क्या यहाँ और भी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखा जाए? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? ठीक है, हम उसके पास चलें। अब जैसा कि आपने अपने हाथ एक दूसरे पर रख रखे हैं, वे जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। परम पवित्र परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हम यीशु को देखते हैं। हम उसका विश्वास करते हैं कि वो यहाँ उपस्थित है। वो अपने वचन को देखता है और उसने कहा, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से दो या अधिक मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके मध्य में होऊंगा। अब स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु इन लोगों को छुए, जैसे कि ये एक दूसरे पर हाथ रखकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो अंतिम प्राधिकार आपने कलीसिया से कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रख देंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। आपने ये प्रतिज्ञा की है और हम इसका विश्वास करते हैं, इसलिए अब ये हो चुका और इसके लिए हम तेरी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और यीशु मसीह के नाम में होने दें कि परमेश्वर की सामर्थ इन रुमालों को बीमार और लाचार के लिए अभिषेक करे, और जैसा कि इन्हें बाहर भेजा जाता है और बीमारों पर रखा जाता है, तो ऐसा होने दें कि वे चंगे हो गए हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वे संत पौलुस से रुमाल कपड़े छुआ कर ले जाते थे, तो अशुद्ध आत्माएं लोगों को छोड़ देती थीं और बीमारियां चंगी हो जाती थीं। और पिता, हम जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, परंतु हम जानते हैं कि आप अब भी यीशु हैं, और हम विनती करते हैं कि आप अपनी महिमा के लिए इसे प्रदान करेंगे। आमीन।
I don't know whether this, the tapes are on yet.
मैं नहीं जानता कि अभी टेप चल रहे हैं कि नहीं, क्या चालू हैं? यदि नहीं तो मैं चाहूंगा कि अब इस समय इन्हें आरंभ कर दिया जाए। अब मैं आशा करता हूं कि आज रात्रि मैं आपको थकाऊंगा नहीं। मैं लगभग आधा घंटा या 35 मिनट पहले आरंभ कर रहा
हूं।
और अब ये एक संडे स्कूल का पाठ है, और हो सकता है मैंने ये पढ़ाया है, हो सकता है कि ये अच्छा होगा यदि मैंने इसे अपने हृदय पर टेप कर लिया है, और हम एक नई प्रवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, नया आराधनालय, बिल्कुल नया। और अब मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। यदि आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं पहला सैमुएल 8वां अध्याय पढ़ना चाहता हूं, और हम चौथे से आरंभ करके 10वें तक, और समय बचाने के लिए 19वें से 20वें तक। और मैंने यहां पर बहुत सारे वचन और संदर्भ इन पन्नों पर लिख रखे हैं। यदि आप लोगों के पास पेन और पेंसिल या कुछ कागज है जिन पर आप ये लिखना चाहते हैं, तो आप लिख कर रख सकते हैं, आप इन्हें ले सकते हैं, या श्री मगौर के पास टेप होंगे।
And I want this tape dedicated to
और मैं चाहता हूं कि ये टेप सेवकों को समर्पित हों। मेरे सेवक भाई जो मुझे गलत समझते हैं, विशेषकर नामधारी कलीसियाओं के, और वे अधिकतर नामधारी हैं। और आज रात्रि मेरा विषय है क्यों मैं संस्थागत धर्म के विरोध में हूँ। और भूमिका के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या एक वचन का पाठ कि इसको निश्चित वचन आधारित बना दूं। मैं पहला सैमुएल 8:4-10, फिर 19-20 पढ़ना चाहता हूँ। मेरी दिखने वाली सभा, मैं विश्वास करता हूँ जब आप घर जाते हैं कि आप इन वचनों को लिख लेंगे और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और वे भाई जो इस टेप को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इस टेप को बंद नहीं करेंगे जब कुछ ऐसा कहा जाए कि आप उससे सहमत ना हो, परंतु उसमें परमेश्वर को ढूंढेंगे। देखिए, ये वचनानुसार है, और मैं सोचता हूँ कि हम अपने प्रति और दिन के संदेश के प्रति उत्तरदायी हैं। मैं विश्वास करता हूँ सब कलीसियाओं में मसीही हैं, और निश्चय ही मैं मसीहों के विरोध में नहीं बोलता, परंतु जिस कारण मैंने ये किया है और वो जो मैंने कहा है, ये पवित्र आत्मा के वचन पर प्रेरणा के कारण मैंने कहा है। अब आइए पहला सैमुएल 8:4 से आरंभ करके पहले 10वें पद तक पढ़ेंगे। तब सब इसराइली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में सैमुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात सैमुएल को बुरी लगी, और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। और सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। अब 19वां पद और 20वां पद समाप्ति के लिए, तो भी उन लोगों ने सैमुएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे।
Now, as a Sunday school class, I would like to,
अब संडे स्कूल की कक्षा की तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यत्न करें कि जितना ध्यान हम वचन पर दे सकते हैं दें। और हम जानते हैं कभी कभी बातें कही गईं और कुछ विशेष कलीसियाएं जिससे कि किसी को ठोकर लगी, जिसे जो वो सुन रहा है उसके विपरीत सिखाया गया। उदाहरण के लिए उस दिन एक व्यक्ति ने मुझे बताया, जो कि मेरा मित्र है, यहाँ पर उपस्थित है, उसने कहा, भाई ब्रणम, जब आपने कहा कि कोई अनंत नरक नहीं है, तो मेरा आप पर जितना भी विश्वास भरोसा था, कहा, मुझे लगा मैं अपनी कुर्सी पर से गिर पड़ूंगा। और मैंने कहा निश्चय ही ये व्यक्ति गलत है। और तब कहा आप हमें कुछ और देर शांत खड़ा रहने दें। और तब आपने कहा कि केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन है जो कि परमेश्वर से आता है और उसी को हम सब खोज रहे हैं। देखा, और ऐसा कोई पवित्र वचन नहीं है जो कि ये कहता हो कि अनंत नरक है, क्योंकि अनंत कभी आरंभ नहीं हुआ न ही कभी समाप्त हुआ। इसलिए बाइबल ने कहा नरक की रचना शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए की गई है, इसलिए ये अनंत नहीं है। एक समय था कि ये नहीं था और एक समय होगा कि ये फिर ना होगा, परंतु वे इसमें धकेल दिए जाएंगे उस आग और गंधक और आग के गढ़ों में एक युग के समय के लिए, परंतु अंततः ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नरक अनंत नहीं है। और यदि अनंत नरक है तो फिर आपके पास अनंत जीवन होना ही चाहिए कि अनंत नरक में जीवित रहें। और यदि ये अनंत था तो ये सदा से था और आप सदा से नरक में थे और आप सदा नरक में रहेंगे। देखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप देखिए अनंत में कभी भी आरंभ या अंत नहीं है और केवल एक प्रकार का अनंत जीवन है और ये परमेश्वर में है, जो कि यूनानी शब्द जोई से आया है जिसका अर्थ परमेश्वर का स्वयं का जीवन है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अनंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके जीवन का भाग है जो कि हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनाता है। तब हमारे पास अनंत जीवन है और जो जीवन हम में है परमेश्वर उस देह को जीवन के साथ अंतिम दिन में उठा खड़ा करेगा। परंतु ये परमेश्वर का आत्मा हम में है जो हमें उठा खड़ा करता है, क्योंकि ये मसीह का आत्मा है जो मसीह में था, जो हमारे शरीरों को उसके साथ जिलाता और उठाता भी है कि महिमा में बैठे और उसके संग राज्य करें। अब विषय पर और इन वर्षों में से निकलते हुए और ये आराधनालय खड़ा है, यद्यपि मेरा समर्पण मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया में डॉक्टर रॉय ई डेविस के द्वारा हुआ यहाँ जेफरसन विले में लगभग 30 वर्ष पहले। अब मैं तब से मैं थोड़े समय के लिए संस्था में था, कुछ महीनों के लिए, जब तक कि कलीसिया के द्वारा कोई वचन विरोधी बात ना उठी और मैंने उनसे कहा मैं इसके लिए तैयार नहीं हो सकूंगा। और इसलिए मुझसे करने को कहा गया या फिर अन्यथा, और मैं अन्यथा हो गया। इसलिए वो एक बात थी जिसका मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। और मैंने उस व्यक्ति से कहा जो कि एक शिक्षक था, यदि आप मुझे ये परमेश्वर के वचन में दिखाएंगे। परंतु ये था कि उसने कहा ये हमारी शिक्षा है। मैंने कहा परंतु मैं इसे वचन से चाहता हूँ, देखिए परमेश्वर का वचन। और इसलिए नहीं कि मैं संस्था से संबंधित नहीं हूँ, कि मैं संस्था के विरुद्ध रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों का आभारी हूँ जिनसे मैं आज बात कर रहा हूँ कि मेरे पास निमंत्रण भी है लगभग सभी नामधारियों से, विशेषकर फुल गॉस्पल रैंक और यहाँ तक कि बहुत से दूसरी कलीसियाओं में भी। मुझसे कहा गया कि आप उनकी संगति में आए और उनके साथ सम्मिलित हों, परंतु मैं स्वतंत्र ही रहा, क्योंकि जो प्रभाव मेरे पास है मैं नहीं चाहता कि एक झुंड के लोगों पर ही रखूं। जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे चाहता हूं कि परमेश्वर के सब बालकों को, बीमारों के लिए प्रार्थना से हर संस्था को लाभ पहुंचे। उसने प्रार्थना के लिए कभी भी प्रश्न नहीं किया या इस वाले के लिए क्योंकि वे अमुक अमुक से संबंधित हैं। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचता है। और अब कारण से आरंभ करके कि मैं उनसे संबंधित नहीं हूँ और इसके विरुद्ध बोला हूँ, पहला ये कि संस्थागत मसीहत वचनानुसार है, मैं ये विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचनानुसार नहीं है। और यही आज रात्रि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रयास करूंगा कि आपको सिद्ध करके दिखा दूं कि ये वचनानुसार नहीं है, जो रूढ़िवादी नहीं है किसी संस्था को भी लें। अब पहले स्थान पर हम इसे धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का अर्थ है ओढ़ना, मतलब किसी चीज को ढांकना। अब आदम का एक धर्म था, परंतु निश्चय ही ये उसने अंजीर के पत्तों से बनाया था और उससे काम नहीं चला। उसने स्वयं अपने सिद्धांत को बनाया और प्रयत्न किया कि बच निकलने का रास्ता बनाया कि किसी चीज में उद्धार पाए, उसने स्वयं किया था। और आदम से और अंतिम संस्था की व्यवस्था तक को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, कभी नहीं। और परमेश्वर के अनुग्रह से आज ये हम बाइबल से सिद्ध करेंगे। धर्म एक ओढ़ना था, आदम ने स्वयं अंजीर के पत्तों से अपने लिए एक ढांकने का साधन बनाया, इसे स्वयं बनाया कि स्वयं कुछ करने का यत्न करे, परंतु परमेश्वर की मांग मृत्यु, एक प्रायश्चित। अब धर्म और उद्धार के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, उद्धार, धर्म एक ओढ़ना है, समझे? उद्धार एक जन्म है, परमेश्वर का वरदान। उद्धार एक जन्म है, परमेश्वर का एक वरदान, और इसे किसी भी मनुष्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता या किसी मनुष्य के झुंड के द्वारा। ये व्यक्तिगत वरदान परमेश्वर के द्वारा लाया जाता है। वचन के अनुसार इससे पहले कि संसार होता, अनंत जीवन के ये वरदान प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले से ठहराए हुए हैं। बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहती है कि मसीह विरोधी जिसे पृथ्वी पर आना था, वो सब पृथ्वी के रहने वालों को धोखा देगा, जिनके नाम संसार के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं हैं, समझे? परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा देखा कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मसीह नीचे उनके लिए मार्ग बनाने आया जो आएंगे, देखा, दूसरों को जानते हुए। यदि वो पूरी तरह से परमेश्वर है तो उसे अनंत होना ही है, और यदि वो अनंत है तो वो बिना सर्वशक्तिमान हुए अनंत नहीं हो सकता। वो सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता जब तक वो सर्वव्यापी ना हो। वो बिना सर्वज्ञ हुए सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए, ये सब उसे परमेश्वर बनाता है, इसलिए वो आरंभ से ही अंत को जानता है। उसे मालूम है कौन होगा और कौन नहीं होगा, और उसे मालूम है बहुत से जो होंगे, इसलिए उसने मसीह को क्षतिपूर्ति करने के लिए भेजा, उनके लिए जो आएंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। यीशु ने कहा, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है, भूतकाल, वो मेरे पास आएगा, और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता जब पिता ही उसे न खींच ले, समझे? अब देखिए, ये सब परमेश्वर के ज्ञान में है। आप कहते हैं, भाई बणम, क्या मैं अंदर हूँ? मैं नहीं जानता, मैं आशा करता हूँ कि मैं हूँ। हम भय के साथ अपने उद्धार के लिए परिश्रम करते हैं और कांपते हुए। अब कलीसिया इस बात के लिए पहले से ठहराई गई है कि परमेश्वर से बिना दाग या झुर्री के साथ भेंट करे। अब यदि हम उस कलीसिया में हैं, तो हम उस कलीसिया के साथ पहले से ठहराए हुए हैं। अब स्वयं को वचन के द्वारा परखें, तब आप जांच सकते हैं कि हम कितनी दूर हैं। अब संस्थागत मसीहत कभी भी ये आश्वासन नहीं दे सकती, नहीं। उनमें से कुछ ने कहा, आप आइए और इस बात को स्वीकार करें कि यीशु ही मसीह है और कलीसिया में बपतिस्मा लें। शैतान भी यही चीजें करता है, वो स्वयं भी विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है और थरथराता है। देखा, ये ठीक बात है। परमेश्वर ने कहीं भी पवित्र शास्त्र में ये आज्ञा कभी नहीं दी कि कहीं कोई संस्था है। बाइबल में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आदम ने एक आरंभ की और वो असफल हो गई, और तब निमरोद ने संस्था बनाने का प्रयास किया। यदि आप इतिहासकार हैं और आप बाबुल का इतिहास जानते हैं, इस लोक का दो बाबुल पढ़ें, आपको ज्योति का एक बड़ा भाग मिलेगा। निमरोद इस पाप के पुरुष ने बाबुल ले लिया और छोटी संबंधित कलीसिया या आसपास स्थापित की, जो कि मसीहत के इन अंत के दिनों की प्रेरिताई मसीहत की छाया थी। और एक बड़ा स्थान बनाया और बाकी सब उसे कर भुगतान करते थे, और उसमें उसने एक मीनार बनाई और लोगों को एक साथ संस्थागत किया, परंतु ये असफल रहा, ये असफल हो गया, ये असफल हो गया। गिनती 16:1 में कोरा, यदि आप पढ़ना चाहें, कोरा ने भी वही प्रयास किया। उसने सारे लेवियों को एक साथ इकट्ठा किया, कुछ प्रसिद्धि, ऊंचा पुरुष, महान पुरुष, पवित्र पुरुष, और वो और दातान एक साथ हो गए और कहा, ये ठीक नहीं है कि एक पुरुष हम सब पर बने रहने का यत्न करे। और इसलिए उन्होंने एक संस्था को एक साथ मिलकर आरंभ करने का यत्न किया, और वे मूसा और हारून के समक्ष आए, जिनको परमेश्वर ने कार्य हेतु चुना था, और उनसे कहा, तुम अपने को बहुत अधिक बनते हो। सारी की सारी सभा पवित्र थी और उनके पास अधिकार था। भीड़ की सभा में ही बचाव है, ठीक है। वे कहते हैं कि ये मसीहत के लिए लागू नहीं होता, ये युद्ध में है। ध्यान दें, सारा का सारा ही भिन्न है। आप पवित्र लेख लेकर कह सकते हैं, यहूदा गया और स्वयं को फांसी लगा ली, और आप जाएं और ऐसा ही करें यदि आप चाहें तो, परंतु ये तो ठीक नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने हारून को चुना, और ये उस समय का संदेश था। और इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरी ओर कितना अच्छा दिखाई पड़ता है, ये परमेश्वर के विचारों के विरुद्ध है। और हम परमेश्वर के विचार को ही अपना विचार होने दें, वो मसीह का मन जो उसमें था अपने में होने दें, और ये बाइबल मसीह के विचार को प्रकट करती है। प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक रहस्य उद्घाटन कहलाई, यीशु मसीह का प्रकाशन। और हम देख सकते हैं कि कैसे उसने बातों को दोषी ठहराया, कैसे वो इसे एक और ले गया, और इसे हम थोड़ी देर बाद लेंगे, ठीक है। कोरा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने कार्य में निष्कपट था। मैं विश्वास करता हूँ मनुष्य गलत नहीं करना चाहता। मैं विश्वास करता हूँ कि ये मनुष्य की अज्ञानता थी जिसने परमेश्वर के हाथ को कार्य करते हुए नहीं देखा और वचनों को जानता है। यही कारण है कि वो उसे तर्क के लिए लाया। और आज की 90% परेशानी यही है कि हम परमेश्वर की योजना में कुछ मिलाने का प्रयास करते हैं, अपने विचार, और हमें कुछ भी सोचना नहीं है, वो हमारे लिए सोचता है। हमें अपने विचार उसकी इच्छा पर समर्पित कर देने चाहिए। अब आप समझ गए ना? कोरा भली मनसा से उन भाइयों के पास गलत शिक्षा को लेकर गया और तर्क द्वारा उन्हें दिखाया कि परमेश्वर ने केवल मूसा ही को आशीषित नहीं किया, वो भविष्यवक्ता, संदेशवाहक, और केवल उसी को ही आशीषित किया हो, परंतु समस्त मंडली पवित्र थी। उसने कहा, समस्त मंडली को ये करने का अधिकार है, समस्त मंडली को वो करने का अधिकार है। इसलिए उन्हें भले पुरुष मिले। लेवी, अब ये परमेश्वर की इच्छा थी जो कि आज सेवक गण कहलाते हैं। लेवी मंदिर के सेवक थे। क्या इसके लिए मूसा ने उन्हें नहीं बुलाया था? और यहाँ वो कभी भी बिना आदर सम्मान के नहीं गया। उसने उन्हें बताया कि धूपदानी लो और पवित्र आग उस पर रखो और सबके ऊपर धूप रखो और इस पवित्र धूप को हिलाओ, जो कि परमेश्वर की आज्ञा थी। और वे कुछ मनुष्यों के झुंड को बनाने आए जो कलीसिया का नियंत्रण रखें, जबकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए एक पुरुष को आज्ञा दी थी। और जब उन्होंने ऐसा किया, मूसा अपने मुंह के बल गिरा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने इस कार्य का प्राधिकार उसे दिया है। और परमेश्वर ने कहा, उनसे धूपदानों को यहाँ तंबू के सामने लाने को कहो। और इसलिए जब वे अपनी आग से भरी धूप दानों को हिलाने लगे और धूप का धुआं उठ रहा था, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तुम अपने आप को उनसे अलग करो, उनके मध्य से निकल आओ, क्योंकि बाद में उसने उन्हें पापी और अविश्वासी कहा, और पाप परमेश्वर के वचन पर अविश्वास है। आप चोरी करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, आप व्यभिचार करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। यदि आप विश्वासी होते तो आप ऐसा नहीं करते। केवल दो ही पहनावे हैं, या तो विश्वास या अविश्वास, आप एक या दूसरे से नियंत्रित होते हैं। और अब आरंभ में परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ और हमारे साथ वासा किया, वो वचन था, वो वचन है। और जब परमेश्वर आप में रहता है तो ये परमेश्वर का वचन है जो आप में रहता है, जहाँ की वो जो कुछ भी कहता है आप आमीन के साथ विराम लगाते हैं, ये परमेश्वर आप में निवास कर रहा है। अब यदि आप ध्यान दें, ये अज्ञान पुरुष अपने हाथों में धूप दान पवित्र आग उनके हाथ में थी, परमेश्वर ने भूमि को खोल दिया और उन्हें निगल गई और उन्हें मूसा से अलग कर दिया, क्योंकि मूसा ने स्वयं को उनसे अलग कर लिया था। और मूसा ने सभा को चेताया कि ऐसे झुंड के बहकावे में ना आए, उनसे अलग रहो। अब आप पवित्र वचनों को जानते हैं, पढ़िए 16वां, 17वां, 18वां पूरा अध्याय और आप ये पाएंगे, अपने आप को इन पापियों से अलग करो, अविश्वासी पापी, उनके मध्य में से निकल आओ, क्योंकि वे नष्ट होने के लिए बढ़ रहे हैं और हर चीज जो उनके पास है। और जब वे भूमि ने अनुकरण किया और इन पुरुषों के साथ जो इस पवित्र आग को लिए हुए थे गिर गई, अज्ञान पुरुष मनुष्य द्वारा धोखा खाए हुए, ऐसे ही आज है, बहुत सारे अज्ञानी मनुष्य रीति रिवाजों के जाल में पड़े हैं, पवित्र वचन अपने हाथों में पकड़े हुए और इसी में से प्रचार कर रहे हैं। मैंने एक सेवक गण के मुख पर से एक भाव आते हुए देखा, तभी एक मेथोडिस्ट सेवक, मेथोडिस्ट का सेवक था पिछली रात्रि तक, और जब उसने देखा, भाई मैं समझता हूँ कि ये सब का सब आपके लिए है कि बाहर हो जाएं। अब देखिए, धूप दान हाथ में लिए हुए आग जल रही है, परमेश्वर के सम्मुख मीठी सुगंध, और वे हाथ उसे पकड़े हुए हैं, तो भी धूप दानी हाथ में लिए हुए नष्ट हो गए, क्योंकि वह निष्कपटता से कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, तब भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध संस्था बनाने का प्रयास कर रहे थे। कहा, तुम अपने पर बहुत कुछ लेते हो, तुम ये कहने वाले कौन होते हो कि तुम्हारे पास परमेश्वर का सारा वचन है। वे ये देखने में असफल रहे कि मूसा उस घड़ी का संदेश वाहक था। देखा, उसके पास यहोवा यूं कहता है था, पृथ्वी पर उसके समान और कोई नहीं था, उसके पास संदेश था और लोग उसे देखने में असफल रहे, और मूसा ठीक यहोवा यूं कहता है के साथ निश्चय ही ठीक है। अब हम आज भी वही चीज पाते हैं, भले मनुष्य, महान मनुष्य, मूल्यवान मनुष्य परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का प्रयास करते हैं जो उनके हाथों में है, उस मनुष्य के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों के द्वारा, यहाँ काटा, यहाँ काटा और ये बना दिया कि आइए इस कलीसिया में सम्मिलित हो जाओ, अपनी सदस्यता बदल दो, और आत्मिक रूप से मृत उस वचन के साथ जो उनके हाथों में है, समझे? वे परमेश्वर के संदेश पर विश्वास नहीं कर सकते, या उस दिन के संदेश पर वे नहीं समझ सकते, क्यों महान परमेश्वर सब लोगों के समूह के साथ कार्य नहीं करेगा और केवल एक ही मनुष्य पर डाल देगा। आज मैंने कितनों से बात करी, भाई बहनों हम क्या करें, हम जानते हैं कि आप ठीक हैं, परंतु हम क्या करेंगे? संस्था हमें बाहर निकाल देगी, हमारे पास जाने के लिए कोई और स्थान नहीं है। मुझे उनके लिए खेद है, परंतु एक स्थान है। आप कहते हैं अच्छा, हम भूखे मर जाएंगे। दाऊद ने कहा, एक समय मैं युवा था और अब मैं बूढ़ा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि धर्मी को छोड़ दिया गया हो और ना उसके वंश को रोटी मांगते देखा। बिल्कुल इसी आधार पर उन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया। वे अपने नामधारी में इतने बंधे हुए थे और पवित्र याजक और पवित्र भवन, पवित्र कलीसियाएं, पवित्र आराधनालय, वे परमेश्वर को मानव मंदिर में देखने में असफल रहे। तू मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है। देखिए, वे इसमें इतने बंधे हुए थे। ये लोग इतने बंधे हुए थे कि दातान और वे ठीक थे। निम्रोद इतना बंधा हुआ था कि वो कुछ प्राप्त कर सकता था जो कि लोगों को परमेश्वर के क्रोध से ऊपर ले जाएगा। आदम निश्चित था, यदि वो अपना नंगापन ढांप ले तो परमेश्वर उसे नहीं देख सकता। आप इसे न ढांकें, परमेश्वर ने इसे ढांकना है। समझे? परमेश्वर की योजना इसे ढांकती है, न कि आपकी। ये सदा ही ऐसे रहा है। वे यीशु को उसके मंदिर में देखने में असफल रहे। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। आज मुझे एक प्रकार से बुरा अनुभव होता है जब मैं देखता हूँ कि बाइबल का वचन रीति रिवाजों द्वारा काटा जा रहा है, और ईमानदार हृदय के लोग जो वहाँ खड़े उस वचन को सुन रहे हैं और वे जानते हैं कि ये सत्य है, परंतु वे बढ़ने का साहस नहीं करते क्योंकि उनके रीति रिवाज उन्हें भिन्न शिक्षा देते हैं। भाइयों, बर्तन धो और आगे बढ़ जाओ। परंतु हमारे लिए और मेरे लिए और मेरा घराना, हम मसीह को लेते हैं, वचन को। समझे? एक क्षण, आइए जरा यूहन्ना 3 को लें। निकोदीमस, एक गुरु और सरदार, एक बड़े नामधारी का जो सनहेद्रिन कहलाता था, वे एक साथ जमा हुए और उन्होंने अपने रीति रिवाज बनाए, एक फरीसी और एक सदूकी, और तब उनके नामधारी, उनकी भिन्नताएं। और इसलिए वे, ये मनुष्य एक शिक्षक था, एक बड़े सनहेद्रिन का सरदार, शिक्षा देने में एक शानदार व्यक्ति। उसने सोचा कि वो पवित्र शास्त्र को जानता है, वो उनके रीति रिवाजों में होता हुआ पवित्र शास्त्र को जानता था। क्या यीशु ने नहीं कहा, तुम अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर की आज्ञा को प्रभाव रहित बना देते हो? देखिए, उनके रीति रिवाजों के कारण ये क्या है? वचन में अपने स्वयं के अनुवाद डालना, बजाय इसके कि वैसे ही छोड़ दें जो ये कहता है। वे ये कहते हैं कि इसका ये अर्थ नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया? ये वही आवाज है जो शैतान ने हवा के लिए प्रयोग की थी पहली संस्था आरंभ करने के लिए। देखा? निश्चय ही ये इस प्रकार होगा। परमेश्वर ये नहीं करेगा। आप जानते हो, ये वही बात है, वही बात आज है। अब हम देखते हैं कि ये सरदार यीशु के पास आया। पहली बात, वो अनंत जीवन की खोज में आया, वो उद्धार की खोज में आया, जबकि उसका स्वयं का प्रभाव था, इसराइल में शिक्षक, परंतु इसराइल का एक गुरु, एक मनुष्य के पास आया जिसका हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है कि वो एक दिन भी विद्यालय गया हो। एक बूढ़ी आयु का मनुष्य, बूढ़ा याजक, संत, एक युवा व्यक्ति के पास आया। वे कुलीन थे, धनी मनुष्य, एक भिखारी के पास आया जिसके पास अपने सर रखने को भी स्थान नहीं था, उससे उद्धार और जीवन का मार्ग पूछने आया। पहली बात, वे उस सनहेद्रिन के थे। निकोदीमस ने ऐसा माना, उन्होंने यीशु में कुछ देखा जो कि संस्था के दूसरे मनुष्य के पास नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें कुछ है, क्योंकि उसने कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू, हम, जी हाँ, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे बाहर कर दिए जाएंगे, समझे। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके संग ना हो। हम ये जानते हैं। ओ प्रभु, संस्था। अब हम ध्यान देते हैं कि यीशु परमेश्वर का प्रकटीकरण था। अब कोई मनुष्य इन चीजों को नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। वे जान गए कि इस मनुष्य में कुछ भिन्न था। वो उस दिन की ज्योति था, वो परमेश्वर का गवाह था। ऐसे ही कोरा ने वही चीज मूसा में देखी। उनके पास उस समय मूसा के समान कोई व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर की उस दिन की दिव्य गवाही था, परमेश्वर की सामर्थ का। कोरा और उसके झुंड ने ये मूसा के अंदर देखा। वे समझ गए कि ये मूसा नहीं हो सकता। मूसा लाल सागर नहीं खोल सकता। मूसा पृथ्वी पर विपत्ति नहीं भेज सकता। ये परमेश्वर मूसा में था, और क्योंकि परमेश्वर जो स्वयं को गवाही में प्रस्तुत कर रहा था या उस दिन की ज्योति, वे इसे देखने में असफल रहे। कोरा लोगों के झुंड को किसी चीज में लाना चाह रहा था। यही कि संस्था हर कुली कबाड़ी को लाने के लिए ठीक है, और उसे मसीहत कहें। एक लड़के को विद्यालय भेजें जो कि परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, जैसे एक अफ्रीकी जाति मिस्र के शूरवीर को नहीं जानती। उसे वहाँ भेजें और उसे शिक्षा दें और उसे मनोविज्ञान सिखाएं और उसे पीएचडी और डॉक्टर की डिग्री दे दें, या कला स्नातक या इसी प्रकार का कुछ और उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज दें, जो कि बचाया तक नहीं गया। वो कुंवारी के द्वारा जन्म को और पुनरुत्थान को नकार देगा, दिव्य चंगाई का इनकार करेगा, परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करेगा। और उन सिद्धांतों को जिनके लिए यीशु मरा, मरकुस 16 को मना करेगा कि ये प्रेरणा से नहीं है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे जब यीशु ने ये शब्द स्वयं कहे हैं। प्रेरितों के काम 2:38 का इनकार, किसी भी पवित्र वचन का इनकार जो कि प्रेरित है, और मनुष्य के रीति रिवाज को लेने का प्रयास जिस विषय में वे नहीं जानते और उसका राग अलापते हैं। और जब आप उन्हें सत्य बताते हैं और सत्य को दर्शाते हैं, वे अपनी संस्था के कारण आगे बढ़ने से लजाते हैं। कोरा ने भी यही किया। उन्होंने परमेश्वर को मूसा में देखा। उसने देखा कि ये परमेश्वर का प्रतिनिधि है और उसके द्वारा कार्य कर रहा है। और निकोदीमस ने मसीह में परमेश्वर को देखा। कोई मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। निकोदीमस पहले ही संस्था में था और निकलने का प्रयास में था। कोरा बाहर था और कुछ बनने का प्रयास कर रहा था कि उसमें प्रवेश करे। ये अंतर था। निकोदीमस उद्धार पाने के यत्न में था कि चीजों से बाहर निकले। वो बालकपन से उसमें था, वो उनसे उकता गया था, वो बचना चाहता था। परंतु कोरा एक स्थान बनाने का यत्न कर रहा था जहां वो एक विशिष्ट हो सके। आज लोगों के साथ यही है, मसीहत के साथ यही परेशानी है। हमारे पास बहुत से नकल करने वाले हैं, और हमारे पेंतिकोस्तो लोग, इस भाव के लिए क्षमा करें, इसके साथ जू बने हुए हैं। शारीरिक तुलना, परमेश्वर एक मनुष्य को उठाए और उसे कुछ दे, और रास्ते में हर कोई उस व्यक्ति की नकल करने का यत्न करेगा। क्या आपको अनुभूति नहीं होती कि आप अपने झुंड को मार रहे हैं? आप फुटबॉल खेल रहे हैं, और अनुग्रह जैसा कि पौलुस ने इसे रखा है, आइए इस दौड़ में हम धैर्य से दौड़ें। वो व्यक्ति जिसके पास बॉल है उसके हाथों से ना लें, उसकी रक्षा का यत्न करें। परंतु बजाय इसके, क्योंकि वो आपके संस्था से संबंधित नहीं है, आप उससे वो ले लेना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति जो बहुत ही अनाड़ी होते हैं, वो नहीं कर सकता। वो गलीचे के फूलों से ठोकर खाएगा और आपसे लेने का यत्न करेगा। ये ठीक बात है। अब आत्मिक रूप में बोलते हुए मेरा अर्थ है, मुझे क्षमा करें, मैं वो एक छोटी सी बात पर ठोकर खा जाएगा, जैसे प्रेरितों के काम 2:38, उसका गिरना निश्चित है। यदि उसे कभी ठोकर लगी तो मरकुस 16 पर लगती है, तो वो उसे कैसे करने जा रहा है? देखा, मसीह के बहुत ही घटिया पाठ, और वो वही बात जिसका नीसेन सभा में विचार विमर्श किया गया, इतने वर्षों के पश्चात वे अब भी इसे ठोकर खाते हैं। प्रयास, कोरा संस्था बनाना चाहता था कि उसमें चला जाए, और निकोदीमस उसमें था और उसमें से बाहर निकलने का यत्न कर रहा था।
Nicodemus was accepted and came out.
निकोदीमस ग्रहण किया गया और बाहर आ गया. कोरा उसमें नष्ट हो गया अपने प्रयासों में. वो अपने ही प्रयासों में नष्ट हो गया. ओ प्रभु, वो संस्था जिसमें निकोदीमस था, ये जानता था कि मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया था. ऐसा ही उसने कहा. यहाँ तीसरे अध्याय में निकोदीमस ये स्वीकार करता है, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य ये आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता जो तू करता है जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो. और उसी झुंड ने अपनी संस्था के कारण उसे बालजबूल कहा, प्रेत आत्माओं को बाहर निकालने की सामर्थ्य के कारण, और कहा वो हमारे लोगों को अपनी शिक्षा से धोखा दे रहा है. आज भी वही बात है. क्या धोखा दे रहा है? यीशु ने कहा, मैं केवल वो करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न हो. मैं केवल परमेश्वर के वचन का पालन करता हूँ, क्योंकि वो वचन था. वो वचन को छोड़ और कुछ नहीं कर सकता. परंतु अपनी संस्था के कारण, अपने रिवाजों के कारण, उन्होंने मनुष्य बांध रखा था. अपने हृदय में वे इसे जानते थे, परंतु उनकी संस्था उन्हें इसका पालन करने नहीं देगी. तब बचने का मार्ग बनाने के लिए, लोगों को संस्था से अलग ना होने देने के लिए, सारे मनुष्य उसके पीछे थे, लोगों को संस्था से ना निकलने देने के लिए और परमेश्वर के सत्य के पीछे चलने के लिए, वो जो कि स्वयं सत्य था, मैं सत्य हूँ, ज्योति हूँ, उन्हें इसके पीछे चलने से रोकने के लिए उन्होंने कहा वो लोगों को धोखा दे रहा है. इस पर सोचिए, एक मनुष्य अपने हृदय में जानता है कि वो परमेश्वर था, कि परमेश्वर उसमें था. कोई भी मनुष्य ऐसी बातें नहीं कह सकता था, ऐसे कार्य कर सकता था जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो. ये जानते हुए और ये कहते हुए और ये स्वीकार करते हुए और तब घूमकर और उसे बालजबूल और लोगों को धोखा देने वाला कहकर पुकारा, उनके लोग उसकी शिक्षा के द्वारा. ओ प्रभु, निकोदीमस जानता था कि वो भविष्यद्वक्ता था. वो एक संस्था में था जो परमेश्वर से पर्याप्त प्रेम करता था, परमेश्वर से पूरी तरह से डरता था, और पुराने नियम के द्वारा ये पहचानता था कि इस मनुष्य में प्रमाणित भविष्यद्वक्ता की योग्यताएं और प्रमाण थे कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया है. मनुष्य को इसका सम्मान करना ही चाहिए. यदि वो रात्रि में आया, वो वहाँ पहुँचा. वो आज के हमारे बहुत से गुरुओं से अच्छा था. वे कभी नहीं आएंगे. अंततः निकोदीमस पहुँचा, इसलिए उसे दोषी न ठहराएं यदि आप अभी तक नहीं पहुँचे हैं. निकोदीमस जानता था कि वो भविष्यद्वक्ता था, इसलिए वो परमेश्वर से डरा. वो उस मनुष्य को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था. उस दिन की ज्योति, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये कितना भिन्न है, कि उसकी संस्था ने कितना कितना कहा है. वो विरोधात्मक था. उसने परमेश्वर को इस मनुष्य को प्रमाणित करते देखा और वो जान गया कि वो भविष्यद्वक्ता है. और यदि वो भविष्यद्वक्ता था, तो प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है और वो जान गया कि वो किस विषय में बात कर रहा है. समझे? इसलिए वो यीशु के पास गया. वो जानना चाहता था कि किस प्रकार उद्धार प्राप्त करे. और यह मनुष्य भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का वचन उसके साथ था, और वो ही उद्धार का मार्ग जानता होगा. परंतु जो निकोदीमस ने सीखना था, वही आज के नामधारी कलीसियाओं के बहुत से लोगों को सीखना है. जो निकोदीमस को जानना था, वही आज के इन नामधारी कलीसिया के लोगों को जानना है. वहाँ एक भविष्यद्वक्ता से बड़ा था. वो उसके पास ये मालूम करने आया, उसे बताया कि उसे बताए जीवन का मार्ग कौन सा है. और यीशु स्वयं ही जीवन था. जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है. इसलिए उसे एक शिक्षा को सीखने के लिए नहीं आना चाहिए था, उसे उस व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए आना चाहिए था. आज रात्रि भी यही है. मुख्य कोने का पत्थर फिर से अस्वीकार किया गया. मुख्य कोने का पत्थर क्या है? ये वचन है. वास्तव में मसीह वो वचन है. उसे कुछ सीखना था. उसने सोचा कि ठीक है, ये मनुष्य भविष्य रखता है, वो एक साधारण भविष्य रखता है। इसलिए क्या आपने ध्यान दिया, यीशु ने उसके प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया, उसने केवल उसके अंधेपन के लिए झिड़का। भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा वो वचन था और वचन की ज्योति, वो परमेश्वर था, भौतिकी द्वारा चमक रहा था और सिद्ध कर रहा था कि ये परमेश्वर मनुष्य में है, वो वचन था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, बल्कि कहूँ संत यूहन्ना का पहला अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। और यहाँ परमेश्वर का वचन था जो कि इस साधारण दुबली पतली मनुष्य की काठी में से होकर चमक रहा था और इसने संस्था को अंधा कर दिया, परंतु वो व्यक्ति विशेषों को लेने के लिए आया था। वो भविष्यद्वक्ता से बड़ा था, वो वचन था, वो जीवन है, ना कि उसे आपको जीवन के आने की शिक्षा देनी थी। वो स्वयं वो जीवन था, वो जीवन था, वो ज्योति था, वो जीवन था, वो अनंत जीवन था जो उसमें था, और वही अकेला अनंत जीवन का देने वाला है। वो जिसके पास पुत्र है जीवन है। ऐसे ही आपके पास उसे शिक्षा देने के लिए वचन नहीं हो सकते, आपको उसी को ही लेना होगा। आप कहते हैं ओ लोगों बैठकर और इस बाइबल को सीखो और सारे ग्रीक शब्द और जो परिभाषाएं हैं और चिन्ह विराम और आदि आदि, और परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं से अधिक नहीं जानते, समझे? नहीं, वो जिसके पास रूप है, वो जिसके पास योजना है, वो जिसके पास पुत्र है, उसके पास वो है, वो व्यक्ति, वही एक है जिसके पास जीवन है। निकोदीमस जानता था कि ये जीवन के विषय में जानता है, परंतु ये कभी नहीं जानता था कि वो अनंत जीवन है। यही वो मनुष्य था जिससे वो बात कर रहा था, दूत, उस दिन का उजियाला, जगत का उजियाला। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ना समझा, वो अपने में भेजा गया और उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि वे इतने संस्थागत थे और बर्तनों के धोने आदि के साथ व्यवस्थित थे और रीति रिवाज इतने थे कि वे देहधारी वचन को देखने में असफल रहे। ये दोहराया गया, इतिहास स्वयं को दोहराता है प्राय हर बार। जी हाँ, वो जानता था कि उसके पास वो जीवन के विषय में जानता था, परंतु निकोदीमस ये नहीं जानता था कि वो जीवन था। आज यही बात है, बहुत से लोग यीशु को बनाने का प्रयास करते हैं, ओ एक महान शिक्षक, वे यहाँ तक कहने का प्रयास करते हैं कि वो भविष्य रखता था, परंतु जब आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि वो परमेश्वर था, तो ये तो अधिकाई हो गई, समझे? परंतु वो परमेश्वर था और वो परमेश्वर है और सदा परमेश्वर रहेगा, बस यही है, ये ठीक बात है। ध्यान दें, उसने निकोदीमस को कभी नहीं बताया। अब जब वो उसके पास आया, उसने कभी नहीं कहा, अब निकोदीमस मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ कि तुम इसराइल में गुरु हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम जो अनंत जीवन को ढूंढ रहे हो, संभवतः तुम्हें अपने छात्रवृत्ति को चमकाना चाहिए, तुमने अपने शब्द ठीक नहीं कहे, निरर्थक, या हो सके तो ऊंचे पद की खोज करो अपने नामधारी कलीसिया में कि अनंत जीवन पा सको। आज बहुत से लोग यही करने का यत्न कर रहे हैं, ओ एक ऊंचा पद, वे एक पास्टर से प्रांतीय प्रेस्बिटर बनना चाहते हैं, या कोई बिशप या कुछ इसी प्रकार का। परमेश्वर का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ध्यान दें, उसने ऐसे व्यक्ति के सामने क्या किया, उसने उसे डांटा उसकी अज्ञानता के लिए कि वो किस घड़ी में जी रहा है। तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम इसराइल में गुरु हो और इन बातों को नहीं समझ सकते? जब उसने कहा एक मनुष्य को फिर से जन्म लेना ही है, क्यों उसने कहा मैं एक बूढ़ा मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में घुसूं? उसने कहा और तुम तो एक बिशप, एक कार्डिनल, एक प्रांतीय प्रेस्बिटर, पेंटिकॉस्टल में हो, या कुछ और, कोई संस्था का महान व्यक्ति, और तू वचन को नहीं जानता? वो हमारे पास मूसा है, यदि तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जानते, क्योंकि वो वही था जिसने मेरे विषय में बोला, समझे? परंतु उनके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, उनकी संस्था वो भिन्न था। परंतु मूसा ने उसके विषय में बताया और वो वही था जिसके विषय में मूसा ने कहा था, और तो भी वे उसे ना जान सके। क्यों? उन्होंने स्वयं को रीति रिवाजों से इतना बांध लिया था कि वे इसे नहीं जान पाए। मेरे भाई जो पढ़ते हैं, जो इस टेप को लेते हैं, अब इसे बंद ना करें। एक मिनट, आइए इस चीज को सामने से देखें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप एक चरवाहे हैं, और मैं ये सब नहीं जानना चाहता। यदि मैं ये प्रभाव डाल रहा हूँ तो आप टेप बंद कर दें और मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ जो कि सत्य है, इसे अपने पास से जाने ना दीजिए। अब मैं मनुष्य की स्थिति क्रम का सम्मान करता हूँ और आदि आदि, परंतु जब आप ये संस्थाएं बनाते हैं, फरीसियों को देखिए, उनका सदूकियों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सदूकी ना तो स्वर्गदूत या आत्मा या पुनरुत्थान में या किसी चीज में विश्वास नहीं करते थे, और फरीसी दोनों पर अधिकार जमाए हुए थे और वे एक दूसरे से झगड़ा करने पर रहते थे। अब वन्नेस एक बात पर विश्वास करते हैं, त्रिएकता वाले दूसरी बात पर, और मेथोडिस्ट दूसरी बात पर, और प्रेस्बिटेरियन दूसरी बात पर, और आपने छोटी छोटी रेखाएं खींच ली हैं, और आपको क्या मिला? एक अलगाव भारत भाईचारे का। मार्क के द्वारा हम बाइबल में उस स्थान को ढूंढेंगे अभी थोड़ी देर में, ये क्या है और परमेश्वर इसे क्या कहता है। नहीं, अब उसने उसकी कभी भी लल्लो पत्तो करने को नहीं कहा, वो उसे वास्तविक बात को न जानने के लिए डांट रहा था। क्या तू इसराइल में गुरु है और इन बातों को नहीं जानता? जब मैंने तुझे पृथ्वी की बातें बताई और तू इसे नहीं समझ सकता? सोचिए, एक गुरु, उच्च श्रेणी का रूढ़िवादी कलीसिया, बिशप, कार्डिनल, और तू बालक रूपी स्वाभाविक बातों को जो मैंने तुझे बताई नहीं समझता? तू कैसे उन आत्मिक बातों को जो स्वर्ग से हैं समझ पाएगा? परंतु एक अज्ञानी बूढ़ा मछुआरा जो कि अपना नाम भी नहीं लिख सकता, ये समझता है। देखा, और यरूशलेम में कलीसिया का मुखिया बनाया गया पत्रस, समझे? ओ, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। देखा, वे इसे देखते हैं, इसका विश्वास करते हैं, वे इसका पालन करते हैं, कुछ नहीं जानते, उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। जैसे कि एक किसान, ये अच्छा नहीं लगता कि चुटकुला रखा जाए, परंतु एक उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा एक किसान ने एक मुर्गी बैठाई और उनके पास पर्याप्त अंडे नहीं थे, उसने उसके नीचे एक बत्तख का अंडा रख दिया। जब वो छोटी बत्तख अंडे से बाहर आई, वो उनके मध्य में विचित्र दिखने वाली चीज थी जो चूजों ने कभी देखी होगी। उसका लंबा सा मुंह था और बजाय मुर्गी की आवाज के बत्तख की आवाज करता हुआ गया, और चूजे घूरे पर से सब खा और चोंच मार रहे थे, और उसका भोजन नहीं था। ये ठीक बात है, और इसलिए एक दिन वो बूढ़ी मुर्गी उसे पीछे घूरे से और आगे टिड्डे पकड़ने के लिए ले गई, और वहाँ पहाड़ पर एक झील थी और वायु प्रवाह झील पर से होता हुआ आ रहा था, और उसने पानी की गंध ली। ये मात्र उसका स्वभाव है। उस बड़ी मुर्गी ने कहा क्लक क्लक क्लक, वापस आओ। उसने कहा क्लक क्लक क्लक, सीधे पानी की ओर। क्यों? वो आरंभ से ही बत्तख था। इससे कोई मतलब नहीं कि मुर्गी कितना बोलती है, वो तब भी बत्तख ही है। और मनुष्य भी इसी प्रकार से है, जो अनंत जीवन के लिए ठहराया हुआ है। जब वो परमेश्वर की ज्योति को देखता है, तो फिर संसार में कितनी भी संस्थाएं उसे वापस नहीं ला सकती। नहीं, क्यों? ये उसका स्वभाव है। हो सकता है उनके साथ लंबे समय से खाना खा रहा हो, उनका कूड़ा और समाज खा रहा हो, परंतु वो एक ऐसे स्थान पर आता है कि वो कुछ भिन्न पाता है, इसलिए वो जान जाता है। मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है। यीशु ने कहा वे अनजान के पीछे नहीं चलेंगी। वे हो सकता है किसी अनजान के पीछे चल रहे हों, परंतु उनके अंदर कुछ भिन्न है। उन्हें एक बार सत्य सुनने दीजिए और फिर उन्हें देखिए। वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। जी हाँ, वो ना जानने के लिए उन्हें डांटता है। तू इसराइल में गुरु है और इन बातों को नहीं जानता, तुझे फिर से जन्म लेना होगा। अब स्वाभाविक मनुष्य, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ ध्यान पूर्वक देखें। तुम्हें नया जन्म लेना ही है। अब स्वाभाविक जीवन, यदि हमें शारीरिक जीवन है, शारीरिक जीवन में क्रियाशील रहने के लिए स्वाभाविक चीजों में तो हमें शारीरिक जन्म लेना ही है। वे आपको कहीं किसी पेड़ पर से नहीं तोड़ देते, देखिए, किसी जगह से छुटाया नहीं है। उन्होंने इसका यत्न किया परंतु बात नहीं बनी। ये तो वास्तविक जन्म होना ही है, ताकि आपको क्रियाशील बनाया जाए, ताकि आपके पास पांच इंद्रियां हों, चलना, बात करना, देखना, चखना, अनुभव करना, सूंघना, सुनना, चारों ओर घूमना आदि आदि, क्योंकि तब आप मनुष्य होते हैं और आप इन चीजों के अधीन हैं, क्योंकि ये शारीरिक जीवन में होती हैं। और इस प्रकार के जन्म में हम कभी कभी सांसारिक बुद्धि में बंद जाते हैं या सांसारिक मामलों में राष्ट्रपति हो जाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी और अच्छे कारीगर और वैज्ञानिक और आदि आदि, और हमेशा से जानते हैं कि आरंभ से ही ये केन की संतान थे जिनके पास इस प्रकार की बुद्धि थी। शेत की नहीं, वे नम्र चरवाहे थे, परंतु शेत के बालक भक्त लोग थे, परंतु केन के बालक सदा ही चतुर, ऊंचे, विज्ञान, डॉक्टर और महान पुरुष। ये ठीक बात है, बाइबल ऐसा ही कहती है, आप जानते हैं, ये यही सिखाती है, और बहुत ही धर्मी, परंतु अंत में नष्ट हो जाते हैं। हम विद्यालय जाकर छात्रवृत्ति पाकर बुद्धिमान हो जाते हैं और आदि आदि, हम बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, तेज और कुछ कर और कुछ कह सकते हैं, और कभी पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा कि इस संसार के बालक राज्य के बालकों से अधिक बुद्धिमान हैं? निश्चय ही वे अपनी बुद्धिमानी से वे बात कर सकते हैं, और चतुर और अधिक बोलने वाले, और पवित्र वचन को लेकर उसे घुमा देते हैं, और जो वचन ने नहीं कहा वो कहलवा देते हैं। और इसका ठीक यही अर्थ नहीं है, जब मनुष्य ये कहे तो उससे अलग हो जाए। परमेश्वर अपने वचन का ध्यान करता है, आप जानते हैं कि बाइबल ने कहा जैसा ऐसा होना चाहिए, ये उसी प्रकार से लिखा हुआ है। देखा, अब ये इस प्रकार से लिखा है कि धोखा खाया जाए या बुद्धिमान को इससे ठोकर लगे। ये इतना साधारण है, यही कारण है कि वे इससे ठोकर खाते हैं, समझे? ठीक है, सारी बुद्धि और चीजें वे जमा कर सकते हैं, तो भी ये वो जन्म नीचे से, इस पृथ्वी से है, ये पृथ्वी से है, और ये परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है। पहला जन्म हमें यहाँ क्रियाशील करता है, हमें मरणहार मनुष्य बनाता है, और पाप और अदन के कार्य के कारण मनुष्य को स्त्री के द्वारा संसार में आने वाला बना दिया। और जो मनुष्य स्त्री से जन्मा है वो कुछ ही दिनों का होता है, परंतु वो मनुष्य जो मसीह से जन्मा है अनंत है। अय्यूब ने कहा, एक मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। ध्यान दें, परंतु मनुष्य जो मसीह से जन्मा है वो ऊपर से जन्मा है, परंतु मनुष्य जो धरती से जन्मा है बुद्धिमान हो जाता है और लगभग चतुर हो सकता है। देखिए, शैतान कितना धूर्त था, उसने हर याजक को जो पृथ्वी पर आया मूर्ख बनाया। निश्चय ही उसने ये किया, उसने मूर्ख बनाया, वो अभी यही कर रहा है। जी हाँ, निश्चय ही उसने ये किया, वो चतुर था, परंतु वो एक दिन अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध आया जिसने उसे पराजित कर दिया। और केवल एक चीज जो हमें करनी है कि केवल उसके विरुद्ध रहें, वो पहले ही उसे पराजित कर चुका है, समझे? परंतु वो नीचे से है, और ये वो बुद्धि है जिसे मनुष्य जमा करके प्रमाणित करता है और सब चीजों को दर्शाता है। मनुष्य क्यों इन चीजों को करे और उन चीजों को करे, ये विरोधात्मक है और परमेश्वर से शत्रुता है, स्वाभाविक बुद्धि। वचन ऐसा ही कहता है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि कितना चतुर है, वे इसे घुमा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे दिखाए कहां परमेश्वर के पास कभी कोई संस्था थी या कभी इसकी आज्ञा दी, परंतु यहां इसे बाइबल में क्या दोषी ठहराता है? इससे कोई मतलब नहीं वे कितना चतुर बनने का यत्न करते हैं, ये विरोध में है। बुद्धि कैसे खड़े होकर आपसे वाद विवाद कर सकती है और आपको ये अनुभव कराए कि आपको इस विषय में थोड़ा सा बताने के द्वारा, परंतु ये वचन विरोधी है। किसी ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम यही बात है जिसके लिए मैं आपके विरोध में हूँ, कहा आप जीसस ओनली हैं। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी संस्था से संबंधित नहीं हूँ। एक दिन किसी प्रांत के प्रेस्बिटेरियन ने भेजा और कहा कि किसी ने मुझे बताया कि भाई ब्रैनम आप जीसस ओनली थे। मैंने कहा ये भिन्न है, ये गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि आप स्वतंत्र प्रेम में विश्वास करते हैं, कि लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर और ढूंढते फिरते हैं। अब देखिए, ये केवल शैतान के झूठ हैं, ये आप जानते हैं। मैंने कहा मैं ऐसी बातों के जो वचन में नहीं है पूरी तरह से विरोध में हूँ। मैं पवित्रता और शुद्धता में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब तक पुरुष जीवित है अपनी पत्नी से बंधा हुआ है, जब तक वे जीवित हैं। बिना पहले प्रार्थना किए उसे आपको नहीं लेना चाहिए। और जीसस ओनली झुंड उनके विरोध में कुछ नहीं, वे दूसरे झुंडों के समान मेरे लिए भले हैं, परंतु वे गलत बपतिस्मा देते हैं, वे नई सृष्टि के लिए बपतिस्मा देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि हैं, ना कि पानी के द्वारा। मैं यीशु मसीह का नाम बपतिस्मे में प्रयोग करता हूँ। इसके विरोध में बाइबल में कोई वचन इसे समर्थन नहीं देता। बाइबल में कहीं भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा कभी भी बपतिस्मा नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि कोई आकर मुझे किसी भी स्थान में एक भी व्यक्ति इस प्रकार का बपतिस्मा दिखाए। तब यदि ये वचन से नहीं है तो इसे करना छोड़ दूंगा। आप कहते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु पौलुस को पड़ा। उसने यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी और तब पवित्र आत्मा पाए। और पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग से कोई दूत भी गलतियों 1:8 आकर कोई और सुसमाचार सुनाए उसे छोड़ जो उसने सिखाया तो वो श्रापित हो। देखिए ये रीति रिवाज है। बहुत समय नहीं हुआ मैंने एक बड़े व्यक्ति से बात की, कहा मैं नहीं कर सकता भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि ये सही है। उसने कहा परंतु मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा इसे मान लीजिए। उसने कहा क्यों, हमारे लोगों के मध्य में मेरा सम्मान। मैंने कहा परंतु मैं परमेश्वर के साथ सम्मान चाहता हूँ, इसलिए उसका वचन मानता हूँ। आपको अपना चुनाव करना है कि आप परमेश्वर की या मनुष्य की सेवा करेंगे। परंतु उनके पास उनकी संस्था है, उसमें ये घोषणाएं तय हैं, इसी का अनुकरण करें। पहली बार ये रोमन कैथोलिक कलीसिया में प्रयोग किया गया, ये ठीक बात है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कुछ भिन्न दिखाए। आप जानते हैं मैंने इतिहास भी पढ़ा है, इसलिए स्मरण रखें ये कैथोलिक बपतिस्मा है और हर कोई जो इस प्रकार से बपतिस्मा पाया हुआ है इस प्रकार से कैथोलिक संगति में बपतिस्मा होता है। यदि प्रभु ने चाहा तो रात्रि समाप्त करने से पहले मैं ये सिद्ध कर दूंगा, ये ठीक बात है। यही कारण है आपको वापस आना चाहिए। जीसस ओनली नहीं, अब जीसस ओनली कलीसिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग असेंबली ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और कैथोलिक में हैं, परंतु उनमें से कोई भी कलीसिया, उनमें से एक भी, वहाँ उनमें व्यक्ति हैं जो कलीसिया से संबंधित हैं, परंतु वो नामधारी कलीसिया उन्हें कलीसिया नहीं बनाती जैसे कि मनुष्य इसे इस प्रकार बनाना चाहता है। ये गलत है। एक मिनट, अभी कुछ क्षणों में हम आपको कुछ वचन देंगे। जी हाँ, पृथ्वी पर क्रियाशील होने के लिए, कार्य करने के लिए आपको स्वाभाविक जन्म लेना ही है, और ऐसा जन्म हमें बुद्धिमान बनाता है जैसा कि मैंने कहा, और हम चतुर बुद्धिमान हमारी ये हमें ये देती है। परंतु स्मरण रखें वो जन्म है जो आरंभ से ही विरोध में है, ये पृथ्वी का है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर के लिए मूर्खता और उसकी योजनाओं के लिए, परमेश्वर की योजनाओं में अज्ञानता है। यदि ये नहीं था तो निकोदीमस यीशु से अधिक जानता, इस विषय में जानता, समझे? क्या तू इसराइल में गुरु है? देखा, देखिए आपके नामधारी कलीसिया कहाँ जाती है, जहाँ आपके महान तेज तरह लोग जो एक साथ मिलकर और अपनी योजनाएं बनाते हैं और तय करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हर बार परमेश्वर पृथ्वी पर किसी चीज पर, वचन पर अपना उजियाला भेजता है, वे उससे भाग जाते हैं, और जैसे ही वो मनुष्य चला जाता है वो उसमें से एक संस्था बना लेते हैं, और जैसे ही वे संस्थागत होते हैं, मैं किसी भी इतिहासकार से पूछना चाहता हूँ जो अब यहाँ उपस्थित है या टेपों पर है, आकर मुझे दिखाए किसी भी समय मनुष्य ने कभी भी कलीसिया को संस्थागत किया, वो वही समाप्त हो गई और फिर कभी नहीं उठी। ये परमेश्वर के विरोध में है, ये वचनों के विरोध में है, इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ। कोई भी चीज जो परमेश्वर के विरुद्ध है, यदि परमेश्वर मुझ में है तो मैं उसके विरोध में हूँ जिसके विरोध में परमेश्वर है। उसका शत्रु मेरा शत्रु है, उसकी कलीसिया मेरी कलीसिया है, उसका जीवन मेरा जीवन है। उसने अपना जीवन दिया, वो मैं बन गया ताकि मैं उसके अनुग्रह से होता हुआ उसके समान बन जाऊं, समझे? हमने स्थान बदले, वो मेरे समान पापी हो गया और मेरे लिए मर गया मेरे स्थान पर, ताकि मैं परमेश्वर का पुत्र हो सकूं जैसा कि वो था। अब आप देखिए, कहा आपके नामधारी पहले ही पहुंच चुके हैं, हमने आरंभ नहीं किया। संसारिक बुद्धि में बुद्धिमान, परंतु परमेश्वर की योजना में मृत। अब थोड़ा पीछे देखें, एक क्षण यहाँ रुकें। आदम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध था क्योंकि उसने वचन को नहीं माना, अपने लिए ओढ़ना बनाने का यत्न किया, एक धर्म, वो असफल हो गया और ये सदा असफल रहा। मनुष्य क्या करने का यत्न करता है? निम्रोद गलत था, कोरा नष्ट हो गया। वे क्या करने का यत्न कर रहे थे? एक संस्था को बनाना। और उसके पश्चात जब अंततः उन्होंने अपने आप को संस्थागत कर लिया, यीशु ने उन्हें मृत पाया, कहा तुम्हारे आंखें हैं और तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे कान हैं और तुम सुन नहीं सकते, समझे? कहा तुम अंधे हो, अंधे की अगुवाई कर रहे हो। यदि अंधा अंधे की अगुवाई करे तो क्या वे दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? उसने कहा तू इसराइल में गुरु है और नया जन्म क्या होता है ये भी नहीं समझता? जब यदि आप इन रीति रिवाजों से अलग होते और वचन को पकड़े रहते तो तुम जानते कि मैं मनुष्य को नया जन्म देने आ रहा था। यदि तुमने मेरे दिन को जाना होता, यदि तुमने मूसा को जाना होता तो तुम मुझे भी जानते। मूसा ने मेरे विषय में कहा और उसने कहा मैं आऊंगा और मैं यहाँ हूँ, और यदि मैं वो कार्य ना करूँ जो मूसा और भविष्यद्वक्ता ने कहे कि मैं करूँगा तो मेरा विश्वास मत करो। यदि मैं परमेश्वर के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो। यदि मनुष्य होने के नाते तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं और परमेश्वर के कार्य कर रहा हूं, तो उन कामों की प्रतीति करो क्योंकि वे मेरी गवाही देते हैं जो मैं कर रहा हूं, समझे? परंतु तब जैसे कि आज, यदि वो आज इस पृथ्वी पर था तो असेंबली ऑफ गॉड के पास एक होता, वननेस के पास एक होता और हरेक के पास एक यीशु होता। निश्चय ही उनकी नामधारी कलीसियाएं गेंद को अपने कब्जे में रखती, समझे? यदि ये नहीं चल रहा है तो वे नहीं है जो भाईचारे को अलग कर रहा है। मुझे एक छोटा लड़का स्मरण है जिसका नाम लिटिल डेविड है। वो अब एक विवाहित पुरुष है, मेरा अनुमान है उसके पास परिवार है। मुझे याद है जब उसने पहले आरंभ किया, मैं सेंट लुइस में गया, मैंने सुना कि एक छोटा लड़का प्रचारक जो कि वहाँ खड़े होकर कहता है यीशु एक छोटा लड़का चरनी में पैदा हुआ, माँ और बाकी सब क्या था। परंतु वो छोटा लड़का नहीं, उसने अपना कोट फेंका, विषय लिया और प्रचारा। परंतु वो क्या था? वो जीसस ओनली हो गया। उसके पिता ब्री वॉकर जीसस ओनली से हो गए। असेंबलियां क्यों नहीं इस पर खड़ी रह सकी? उन्हें उनके लिए छोटा डेविड लेना था। क्यों? वे बाकी सब उनके लिए छोटा डेविड ले आए। और एक बार जब छोटा लड़का फ्लोरिडा में सभा ले रहा था, उसने मुझे बुलाया कि उसकी सहायता करूं। और भाई मूर और मैंने सामने के दो पन्ने अखबार के पढ़े, कुछ नहीं केवल छोटा डेविड। हर कलीसिया के पास छोटा डेविड था। ओह भला हो, क्यों? यदि परमेश्वर के प्राचीनों के झुंड ने इस छोटे व्यक्ति में वरदान को पहचान लिया था, वो हजारों प्राणों को परमेश्वर के राज्य में ले जाता। देखिए, जब तक वो अपने रीति रिवाज भूले रहा मनुष्य के विषय में, और ये इस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में वरदान दिया, उसे प्रयोग किया। जब दिव्य चंगाई का प्रतिनिधित्व पहली बार किया गया था तो प्रत्येक के हाथों में अनुभूति होती, वे बीमारी को सूंघ सकते थे। ओह प्रभु, क्यों उन्हें ये करना था? उनकी संस्था दौड़ में पिछड़ रही थी। देखिए, आपके पास अपनी संस्थाएं हैं, परमेश्वर की योजना से आगे आप सोचते हैं क्या? परंतु परमेश्वर की अपनी कलीसिया जैसी ही चल रही है, एक रहस्यमय देह, आप उसमें सम्मिलित नहीं होते, आप उसमें उत्पन्न होते हैं। संसार की बुद्धि में बुद्धिमान होना, परंतु परमेश्वर की योजना में मृत। तो फिर मुझे बताएं, आप उन्हें बता सकते हैं और उन्हें सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से वे गलत हैं और प्रतिज्ञा, और तब भी वे इसे नहीं देखते। मैं नीचे बैठ सकता हूं और वचन लेकर आपको दिखा सकता हूं कि नामधारी कलीसिया गलत है। मैं दिखा सकता हूं जो मत आज आपके पास हैं वे गलत हैं। देखिए, इस कलीसिया के मत दिखाते हैं कि ये गलत है, और वे कहेंगे ठीक है, हमें विश्वास करने के लिए यही सिखाया गया है। आप देखिए, मेरे विचार में ये भूसा है। यदि आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, टूटी बेकार तोप। जी हाँ, ये ठीक बात है। वे नहीं देख सकते। यीशु ने कहा तुम नहीं देख सकते कि तुम मेरे पास आकर जीवन ले सको। वहाँ निकोदीमस था, एक सम्मानित मनुष्य, एक महान पुरुष, अपनी कलीसिया में एक बिशप, प्रसिद्ध मनुष्य, सबके द्वारा प्रेम किया जाने वाला, और यीशु के पास आया, जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं किया। वो इसके लिए बहुत ही अज्ञानी था जब यीशु ने उसे इसके लिए डांटा, परंतु आने के लिए वो बहुत ही सच्चा था। बाकी वे तो आए ही नहीं, वे महायाजकों के साथ खड़े हुए और बिशप आदि आदि और आदि आदि, समझे? वे उनके साथ खड़े हुए बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन को सुनते, वे अपने प्राचीनों के रीति रिवाजों को ले रहे थे। अब आप उन्हें बता सकते हैं, वे इसे नहीं सुनेंगे। आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरा अर्थ इस अपवित्रीकरण से नहीं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं बाहर जाऊं और पेड़ की गांठ मुझसे पूछ सके, आप संसार में कैसे चलते हैं जैसे आप चलते हैं? मेरे पास जीवन है, मैं इस पेड़ में गांठ हूं। वो ये सिद्ध कर सकती है कि उसमें जीवन है, परंतु ये गलत प्रकार की है। यदि वो आसपास घूमना चाहे, केवल एक ही विधि है कि वो आसपास घूमे, देखे, चखे, अनुभव करे, सूंघे और सुने। यदि वो बात कर सके और मुझसे कहे और केवल वो मार्ग पूछे, उसे वैसे ही उत्पन्न होना है जिस प्रकार मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आमीन। वो और किसी और प्रकार से इसे नहीं समझेगा, परंतु यदि वो वैसे ही जन्म ले जैसे मैंने लिया है, तब वो उन बातों को जानेगा जो मैं जानता हूँ। आमीन। ओ प्रभु। जी हाँ श्रीमान, आप पेड़ की गांठ को ये नहीं बता सकते कि हम कैसे क्रियाशील होने के लिए हिलते हैं। उसे हमारे जैसा जीवन लेना ही पड़ेगा कि इसे समझ सके, आत्मा में वैसे ही हो। यही बात आत्मा के साथ है, या आप इसे नहीं समझ सकते। इसका चित्र बनाने का यत्न ना करें, केवल पहले उसके पास आएं, क्योंकि जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। उसने कहा ये इसे समझना है, ये जानने के लिए आपको नया जन्म लेना ही है। आप कहते हैं मैंने नया जन्म पाया है और वचन का इनकार करते हैं, तो आप कैसे हो सकते हैं? आपका अपना जीवन आपको इसका प्रमाण देगा। आपका अपना झुंड जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, एक से पंखों वाली चिड़ियाओं के साथ, समझे? जब तक हम कुछ मिनटों में उन बातों तक ना पहुँचे, प्रतीक्षा कीजिए। आत्मा के द्वारा आए, आप कैसे लोगों को आत्मिक बातें बता सकते हैं जो आत्मा से उत्पन्न ना हुआ हो? आपको आत्मा से जन्म लेना ही है। आपको आत्मिक बातों को समझने के लिए आत्मा से जन्म लेना ही है। यीशु ने कहा वायु कहाँ जाती है, तू नहीं बता सकता कहाँ से आती है या कहाँ जाती है, समझे? ऐसे ही आत्मा से जन्मा व्यक्ति है, वो आपको नहीं बता सकते। वो मनुष्य जो आत्मा से जन्मा है कोई विचार नहीं लेता, वो परमेश्वर को विचार करने देता है। क्या आप सोचते हैं कि मैं यहाँ मंच पर खड़ा हो सकता हूँ एक विचार लेकर और व्यक्ति को पीछे जो है उसे बता सकता हूँ, उसका नाम जॉन डो है और वो अमुक अमुक स्थान से आया है, उसने ये किया है और उसने दूसरी स्त्री से विवाह किया है वहाँ जो पीछे है, और 20 वर्ष पहले इस स्त्री के द्वारा उसके पास बालक है, उसे ये बातें पीछे लेनी होती है और ये कहता है? क्या आप सोचते हैं विचारों को लेना मैं ये कर सकता हूँ? इस जन्म में ऐसी बुद्धि नहीं है इस पृथ्वी पर, इसके लिए ये इससे अलग है, ये तो ऊपर से ही आना है। तब आप जब आत्मा से जन्मते हैं उस जीवन से जो उसमें था, ये बातें किसने की? कहा जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे। आपका जन्म बदल नहीं है, आपको धोखा दिया गया है। आप अन्य अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं, आप ऊपर नीचे कूद सकते हैं, आप चिल्लाए होंगे, आपने ये सब कुछ किया होगा, आप एक ईमानदार रहे होंगे, ऐसे ही निकोदिमस था, परंतु उसमें जन्म की कमी थी। और जब आप वचन का इनकार करते हैं, इसे कहीं और लगाने का प्रयत्न करते हैं और इसके साथ कुछ करते हैं और इसे इस प्रकार से बिखेर देते हैं, तब यीशु ने कहा वे जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे, सारे संसार में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। जब तक ये सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा ये चिन्ह होते रहेंगे। मुझे वो स्थान बताओ जहाँ उसने कभी भी इसे कलीसिया में से ले लिया हो। मुझे वचन दिखाएं जहाँ उसने कहा, कभी भी कहा कि इतने समय तक उसने कहा समस्त संसार में हर प्राणी को। जी हाँ, आपको इसी प्रकार का जीवन लेना है जो कि उसने अपने जीवन को जीने के लिए लिया, और जब आप उसका जीवन देखते हैं तब आप उसका वचन जान जाएंगे। ये ठीक बात है। जब वो व्यक्तिगत सर्वनाम, विचार नहीं, कल्पना नहीं, संवेदना नहीं, परंतु जब वो पवित्र आत्मा आता है, वो इन बातों को लेगा जो मैंने आपको बताई और उन्हें आप पर प्रकट करेगा, उन्हें आप पर और आपको दिखाएगा वो बातें जो होने वाली हैं। यही जन्म है, यही प्रमाण है कि ये वचन है। और जब मनुष्य कहता है कि उसके पास पवित्र आत्मा है और परमेश्वर के वचन का इनकार करे और उसे कहीं और रखे, पवित्र आत्मा कैसे अपने ही वचन का इनकार करेगा? मुझे वचन में एक संस्था दिखाओ। देखिए आप यही हैं, समझे? ठीक है, क्या आप व्यापारियों के लिए सोच सकते हैं? अब यहाँ हमारी कलीसिया कितने पीछे है? क्या आप व्यापारी के लिए सोच सकते हैं जिसने यहाँ पर व्यापार आरंभ किया और यहाँ पर ये वास्तव में ये व्यापार फला फूला और उसे कुछ न कुछ सहायता एकदम चाहिए थी और उसे एक मृत लोगों के झुंड में जाना था, लाशें, और कह रहा है क्या आप आकर मेरे लिए कार्य करोगे? उसके लिए कोई भी लाभ ना होगा। यही कारण है कि संस्थाएं कभी भी फिर से नहीं उठ सकी, समझे? मरे हुए अविश्वासियों का एक झुंड जो अपने को निमरोध के समान एक स्थान पर जमा कर रहे थे, कोरह के समान, जैसे कि सारे युगों से होते हुए। कैसे? उसने उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया, कभी भी एक संस्था का प्रयोग नहीं किया, वो नहीं कर सकता। ये पहले ही परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, वो बहुत आगे निकल गई, ये पहुंच से बाहर है, ये ढूंढने से भी बाहर। आप कैसे एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो हिल नहीं सकता, लकवाग्रस्त सिर हाथ और पैर, उससे कहें कि तू पैरों पर दौड़ना चाहता है, इस दौड़ को धैर्य से दौड़, बाकी एक और रख दे, समझे? वो इसे कैसे कर सकता है जबकि वो व्यक्ति हिल नहीं सकता, वो लकवाग्रस्त है? आपको पहले उस पर से लकवे को हटाना होगा, तब वो दौड़ सकता है। आज संस्था को इसी बात की आवश्यकता है, दिव्य चंगाई। ओ प्रभु, मुझे आशा है मैं नहीं पाता, आलोचना सुन पड़ता है। देखा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, परंतु यदि एक गड़ी हुई कील सरलता से नहीं खींचती है, समझे? यही कारण है कि पवित्र आत्मा नामधारी कलीसिया का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये स्मरण रखिए, मैं विश्वास करता हूँ कि मार्टिन लूथर के पास पवित्र आत्मा था, पूर्णतः। हो सकता है भाग में ना हो, ये आज है, क्योंकि ये दिया नहीं गया था। हम इसमें से होकर निकले हैं, इस आराधनालय के लोग, यहाँ शाम पट पर। परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जो विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। मैंने आज प्रातः तक कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जिसने मेरे समान विश्वास किया। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने चार्ल्स फुलर को सुना, वो भी विश्वास करता है कि नया जन्म पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, नया जन्म जन्म लेना है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा है, समझे? ये ठीक बात है। अब हम पाते हैं कि इस मनुष्य को क्रियाशील होने के लिए नया जन्म लेना ही था। ठीक है, शरीर से जन्म लेना, इससे आपके पास सांसारिक बुद्धि होती है, और संसार की बुद्धि अपने शारीरिक गुरु की मानती है। ठीक है, बिल्कुल यही है। क्यों एक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ है और उसे परमेश्वर का वचन बताएं तो वो अपने बिशप की, अपने प्रेस्बिटर की या अपनी संस्था की मानेंगे बजाय जीवन के वचन की? क्यों? ये सिवाय उसके कुछ नहीं जानता। क्यों आप जानते हैं, किसी दिन मैं एक प्रेस्बिटर हो सकता हूँ। क्यों? निकोदीमस एक गुरु था, वो तो प्रेस्बिटर से आगे था, वो एक पास्टर से बड़ा था, वो आगे था, वो इसराइल में एक गुरु था, समझे? जी हाँ, वो एक महान पुरुष था, और वो इस झुंड से संबंधित था, और वो परमेश्वर से अधिक और कुछ नहीं जानता था, समझे? वो जितना भी जानता था वो थोड़ा इतिहास था। उस ऐतिहासिक परमेश्वर से क्या लाभ यदि वो आज एक सा नहीं है? मूसा के परमेश्वर से क्या लाभ यदि वो परमेश्वर आज वैसा नहीं है? परमेश्वर की क्या भलाई जो मनुष्य को क्रूस पर बचा सकता था, जो उस स्थिति को आज नहीं बचाए रख सकता? जैसा कि मैंने सदा कहा है, तुम्हारी छोटी चिड़िया को अच्छा बीज और विटामिन देकर उसके पंख अच्छे मजबूत किए जाएं और अच्छे पर, और उसे एक पिंजरे में रख दें। मैं ये नहीं समझ पाता, उस सामर्थ्य परमेश्वर के विषय में बताना और बातें, और उसे संस्था में चिपकाए रखें जो कि ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते, समझे? ये बेकार है, यही कारण है कि ये असफल है, वो मृत है, आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते, परमेश्वर ने इसे कभी प्रयोग नहीं किया। जरा सोचिए, पवित्र आत्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक संस्था कहीं भी वचन में या कहीं इतिहास में प्रयोग की गई हो। यदि कोई इस टेप पर या जो उपस्थित है मुझे दिखा सकते हैं कि कहां पवित्र आत्मा ने संस्था को लिया और पृथ्वी पर हलचल की, आइए मुझे बताएं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये उस इतिहास की पुस्तक में से है। आप जानते हैं कि ये वचन में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिखाएं ये कौन से इतिहास से है। परमेश्वर ऐसी चीज कभी प्रयोग नहीं करता, वो एक व्यक्ति को प्रयोग करता है हमेशा। ठीक है, आत्मा से जन्म लेना, अब शरीर से जन्म लेना और संसार की बुद्धि पाना, बुद्धि सदा अपने शारीरिक गुरु की मानेगी। आत्मा से जन्म लेना, विश्वास करना और बाइबल की शिक्षा को मानना पवित्र आत्मा के द्वारा, और मनुष्य जो पवित्र आत्मा से जन्म लेता है वो चाहे कुछ हो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, चाहे रीति रिवाज उसे कुछ भी बताएं, वो बस यही है, आपने फिर से जन्म लिया है। यही कारण है कि आप देखते हैं एक संस्था से संबंध रखना, अपनी सारी आशाएं उस पर रखना। अब मैं ये नहीं कहता जो लोग संस्था में हैं नया जन्म पाए हुए नहीं हैं। मैं कुछ ही मिनटों पर उस पर आऊंगा, प्रभु चाहेगा तो। निश्चय ही वे हैं, परंतु वे व्यक्तिगत हैं। संस्था नया जन्म पाई हुई नहीं है, वे व्यक्ति हैं जो वहाँ नया जन्म पाए हुए हैं, परंतु संस्था केवल उन्हें परमेश्वर से अलग करती है, बस यही करती है, उसे अलग करती है। ठीक है, शरीर के अनपेक्ष नामधारी कलीसिया शरीर को शिक्षित करती है, ये सदा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। नया जन्म लेने का अर्थ है ऊपर से जन्म लिया हुआ, फिर से का अर्थ ऊपर से है। मैं समझता हूँ कि आप ये जानते हैं, फिर से जन्म लेने का अर्थ ऊपर से जन्म पाया हुआ। अब आप देखेंगे, आप इसका अध्ययन शब्दकोश से कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। देखिए, अर्थ है एक जन्म जो ऊपर से आता है, क्योंकि आपने यहाँ जन्म लिया है, फिर से जन्म लेने के लिए आपको यहाँ ऊपर से जन्म लेना है, फिर से जन्म लेने के लिए। तब वो राज्य इस राज्य से बहुत अधिक ऊंचाई पर है, जब तक ये राज्य उसके लिए मूर्खता ना बन जाए और वो इसके लिए मूर्खता ना बन जाए। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, मैं और मेरी पत्नी अधिक समय नहीं हुआ कि कुछ सौदा लेने गए कुछ महीनों पहले, और हमने एक स्त्री को देखा जो स्कर्ट पहने हुई थी, और ये आश्चर्यजनक चीज थी कि हमने लंबे समय से ऐसा नहीं देखा था। अच्छा, तो इस प्रातः मैं इसे धर्म विरोधी होकर नहीं कहता हूँ, मैंने एक महान प्रसिद्ध संस्था को सुना और मेरी पुत्री और मैं रेडियो सुन रहे थे, जैसे कि हम आराधनालय को समर्पित करने जा रहे थे, और उन्होंने गाना गाया, एक प्रकार का कुछ अलग सा आदि आदि कुछ शास्त्रीय गायन, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वे अपनी सांसें तब तक खींचती हैं कि उनके चेहरे नीले हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये गाना गाना है, ये तो चीखना है। मुझे अच्छे पुराने पेंटिकॉस्टल गाने अच्छे लगते हैं, आपके हृदय से निकलते हुए। आप कोयले की बाल्टी में धुन को नहीं ले जा सकते, परंतु तो भी आप गा रहे हैं, एक आनंदपूर्ण कोलाहल प्रभु के लिए कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये आत्मिक है, मुझे ये पसंद है, परंतु अपनी सांस को तब तक रोके रखना कि मुंह नीला हो जाए और मर जाए और फिर वापस आए। आप स्वयं भी नहीं जानते कि आप क्या गा रहे हैं, तो आप दूसरों से क्या आशा करते हैं कि वे समझें? यही है, यीशु ने कहा, हम उन बातों को बोलते हैं जो हम जानते हैं। ये ठीक बात है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? गाना गाना जो हम अपने हृदय में जानते हैं, जो हम अनुभव करते हैं। और जब वे मेरी पुत्री संगीत का अध्ययन करती है, और उसने कहा, भाई, उसने कहा, ये वास्तव में शास्त्रीय है। मैंने कहा, जी हाँ, परंतु कितने उस गायन मंडली में से, लगभग 50 लोग, क्या आप जानते हैं कि उनकी सांसों में सिगरेट है? उनमें से कितनी गायन मंडली, आप सोचते हैं कि पिछली रात्रि शनिवार था, उन्होंने छोटा सामाजिक पे नहीं लिया? उनमें से कितनी महिलाएं अपने बाल कटाए हुए हैं? कितनों ने रंग लगा रखा है? जब आराधनालय के पास्टर ने कुछ दिनों पहले कहा, परमेश्वर ने सुंदरतम संसार बनाया जब उसने रंग की रचना की, जबकि हम जानते हैं कि बाइबल में एक स्त्री ने अपने मुख को रंगा था और परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिला दिया। और हम में से कोई भी जानता है कोई भी बात कलीसिया के विषय में और मूर्ति पूजकों के विषय में जानता है कि रंग मूर्ति पूजकों का चलन है, हमेशा से रहा है, और तब भी वे इसे करती हैं। और पुरुष धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं और करते जाते हैं और वहाँ खड़े हुए गाते हैं और इस प्रकार की आवाजें। हम इसमें थोड़ी देर के पश्चात आएंगे, ठीक यही संस्थागत विचारों से जुड़े हुए हैं, जबकि मेरे विचार में न्याय में निराशा पाने जा रहे हैं। आत्मा से जन्म पाना, विश्वास करना और आत्मा में व्यवहार करना, समझना और अपने पूरे हृदय से विश्वास करना कि यीशु मसीह है और ये उसका वचन है, और इसमें कोई और वचन नहीं मिलाया जा सकता या इसमें से निकाला जा सकता है बिना अपने नाम को जीवन की पुस्तक में से कटवाए। ये कठोर वाला था। यदि आप इसमें कुछ मिलाएं अपनी रीति रिवाजों में से, या इसमें से एक बात निकालें, ठीक है, मसीह ने स्वयं कहा, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दिए जाएंगे। अब बाइबल में संस्था नामधारी कलीसियाएं ढूंढें, आप इससे भागेंगे, ठीक है। शारीरिक नामधारी शिक्षा को छोड़, जो बाइबल के विरुद्ध है, जी हाँ, नया जन्म पाने का अर्थ ऊपर से नया जन्म पाना, ऊपर से जन्म पाना। तब हम ऊपर की चीजों के लिए क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि वो स्वयं अपने वचन में क्रियाशील है, आप में से होते हुए उसकी डाली दाखलता के लिए। इसी कारण यीशु ने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो। निश्चय ही उसने कहा, कोई मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, देखिए निकोदीमस को यहाँ उसने निरुत्तर कर दिया। जब निकोदीमस आप जानते हैं उन्होंने सोचा वो मनुष्य होते हुए वो परमेश्वर नहीं हो सकता और उसने कहा और उसने कहा कोई भी मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा मनुष्य का पुत्र जो अब स्वर्ग में है। ये उसके लिए बहुत था। वो कैसे हो सकता है मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतरा जो स्वर्ग से उतरा वही है जो स्वर्ग पर चढ़ गया और वही जो यहाँ इस घर के ऊपर खड़ा हुआ निकोदीमस से बात कर रहा है अब स्वर्ग में था। उसे ये देखना था कि वो परमेश्वर था वो सर्वव्यापी हर जगह था समझे। परंतु उसके अपने रीति रिवाजों में ये नहीं जान पाया। वो आत्मिक विचारों का नहीं था वो शारीरिक विचार और इसे नहीं पकड़ सका। वो कहता है मनुष्य क्या कहता है कि मैं मनुष्य की संतान कौन हूँ। कुछ कहते हैं कि वो दाऊद का पुत्र है। उसने कहा तो फिर क्यों दाऊद ने आत्मा में उसे प्रभु कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को पैर की चौकी न बना दूं। वो कैसे जड़ और पुत्र दाऊद का हो सकता है। वो दाऊद से पहले था वो दाऊद था और दाऊद के बाद समझे। वो दाऊद की जड़ और वंश दोनों हैं। बाइबल ने ऐसा ही कहा है दाऊद की जड़ और वंश दोनों। वो उसका पुत्र कैसे हो सकता है वो कैसे उसका प्रभु हो सकता है। बाइबल ने कहा अब से वे उससे कुछ नहीं मांगेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात भी है। जी हाँ श्रीमान ठीक है। ऊपर से नया जन्म लिया तब क्रियाशील होते हैं ऊपर की चीजों में क्रियाशील होते हैं और क्योंकि उसका जीवन हम में है जो कि उसका वचन है एक प्रमाणित वचन स्वयं में। वो आत्मा जो आप में है वो वचन आप में शरीर बना। आत्मा का विचार वचन है और ये वचन को प्रमाणित करने में क्रियाशील है। अब आत्मा किसी नामधारी कलीसिया में क्रियाशील नहीं है। ये संस्था बनाने में रुचि नहीं रखता क्योंकि आत्मा स्वयं में संस्था विरोधी है। संस्थाएं संसारिक वस्तुओं को देख रही हैं, संसार की बुद्धि और वे बड़े मंदिर बनाते हैं और शानदार चीजें और महान शानदार संस्थाएं बढ़िया प्रचारक और आदि आदि इस प्रकार से और नगर का सबसे अच्छा सामाजिक समूह जबकि आत्मा सच्चा हृदय खोजने का यत्न कर रहा है जहाँ की आत्मा चिंतित है कि हर वचन को जो परमेश्वर का है प्रकट और सिद्ध करे कि वो सत्य है। आप कैसे आत्मा संस्था में कार्य कर सकता है जबकि वो मत के स्थान पर वचन लेने का इनकार करता है। ये इसे नहीं कर सकता इसलिए आप देखिए ये मृत है। परमेश्वर उन स्थानों में जाकर अपने झुंड को ढूंढने का यत्न नहीं करता कि उसके लिए कार्य करे क्योंकि वे पहले ही मरे हुए हैं। वे वचन में अविश्वासी हैं या उनमें नहीं होंगे समझे। अब हम ऊपर की बातों में क्रियाशील हैं। अब आत्मा का विचार वचन है। अब ये ठीक बात है क्योंकि आत्मा वचन को जीवन देता है। देखिए वचन मारता है आत्मा जीवन देता है। अब आज जब मैं आ रहा था तो उन सुंदर वृक्षों को जो जंगल में थे देख रहा था। बड़े बड़े पहाड़ भूरे पीले मोरपंखी वृक्ष उसमें बीच बीच में कहीं कहीं थे। मैंने कहा आप जानते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा हमारे यहाँ अभी मृत्यु हुई है और परमेश्वर ने अपना फूलों का गुलदस्ता रखा है उन्हें पहाड़ों पर चिपका दिया है। ये अंतिम संस्कार के फूल हैं। जीवन मिट्टी में वापस जा चुका है। परमेश्वर ने अपने सारे बीज फूलों में से निकालकर गाड़ दिए हैं और आदि आदि उन्हें वापस गाड़ दिया है और उसने अपना गुलदस्ता अभी अभी खिला दिया। वो पृथ्वी की ओर देख रहा है। ये अंतिम संस्कार के फूल हैं। परंतु जब सूर्य फिर से उगता है बीज फिर से जीवन को लेगा। आमीन। आत्मा वचन को प्रमाणित करने में रुचि लेता है और यदि आप रीति रिवाजों को वचन के स्थान पर स्वीकार करते हैं। अब आप कहते हैं कि हम इस सब का विश्वास करते हैं परंतु भाई बहनों मैं जानता हूं कि हम ये विश्वास नहीं करते। तब ठीक यहीं जहां आप रुक जाते हैं। एक बार पुरोहित ने मुझे बताया कि उसने एक कप्तान ने कहा यह मेरा विश्वास है कि वो मेजर था। कहा पुरोहित वहां जाओ एक कप्तान मर रहा है उसे मशीन गन की गोलियां लगी हैं। वो वहाँ गया और कप्तान संघर्ष कर रहा था। वे उसे खींचकर रेड क्रॉस के तंबू में ले गए और उसने कहा कप्तान उसने लहू की गड़गड़ाहट से होते हुए देखा। उसने कहा जी हाँ श्रीमान और उसने कहा कि आप पुरोहित हैं। हाँ उसने कहा, कप्तान तुम मर रहे हो। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा, क्या आप एक मसीही हैं? उसने कहा, मैं हुआ करता था। कहा, कप्तान तुमने उसे कहाँ छोड़ा? उसने कहा, तुम उसे वहीं पाओगे जहाँ से तुमने उसे छोड़ा था। ठीक है। कप्तान ने कहा, मैं सोच नहीं सकता। पुरोहित ने कहा, तुम नहीं पा सक रहे हो, परंतु तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कुछ थोड़े से मिनट का समय है। जिस प्रकार से तुम संघर्ष कर रहे हो, मुंह खुल रहा था, लहू उसके मुख से निकल रहा था और कानों से, और मशीन गन की गोलियां उसके आर पार थी। कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है कि जल्दी करो, तुम्हारे फेफड़े भर रहे हैं। और जैसे कि वहाँ पड़े पड़े वो संघर्ष कर रहा था और वो कप्तान अपनी यादों में घूमने लगा, उसके मुख पर एक मुस्कुराहट आई। कहा, अब मैं जानता हूँ। कहा, तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? वहीं से आरंभ करो। उसने कहा, अब मैं स्वयं को तुलाने के लिए छोड़ देता हूँ। यही जहाँ उसने उसे छोड़ा था, वहीं वो उसे पाता है। जब आपकी संस्था कुछ भी वचन के विरुद्ध सिखाती है, आप उसे वहीं छोड़ जाते हैं, एकदम वापस आए, क्योंकि वो प्रमाणित करने में कार्यरत है और वचन को सत्य बनाता है। यही है जो यीशु था, सदा पिता की इच्छा को करता था। समझे? ये बात ठीक है। इसलिए देखिए, निकोदीमस की समझ परमेश्वर से कोई मतलब नहीं रखती, अब कोई अर्थ नहीं। यदि वो बड़ा मान्य व्यक्ति था, जैसा कि हम संस्था में कहते हैं, इजराइल में एक गुरु, उसकी सारी शिक्षा और समझ उसका अर्थ नहीं समझ पाई। जब वो मसीह के सामने खड़ा हुआ, उसे केवल एक झिड़की। अब मैं कल्पना करता हूँ कि सारे लोग कहते हैं, पवित्र पिता निकोदीमस, हम आपके सामने झुकते हैं श्रीमान। परंतु जब यीशु वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था, उसने उसकी अज्ञानता के लिए उसे झिड़का। इसलिए आप देखिए, ये सब कहाँ जाता है, इसे भूल जाएं, आइए परमेश्वर के पास चलें। ये ठीक बात है, ठीक। ना ही कोहरा की महान समझ का कोई अर्थ था, या आदम की। प्रत्येक परमेश्वर को प्रमाणित प्रकट करते हुए वचन का इनकार करता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने, अब हम थोड़े अधिक पानी में जाएंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, उनमें से प्रत्येक, वो कारण जो उनके पास परेशानी का था, निकोदीमस, कोरा, निम्रोद और आदि आदि, वो इस कारण वे परमेश्वर के दूत को उस दिन के प्रमाणित वचन के साथ नहीं पहचाना। अब कोई भी ये जानता है, अब हम इस पर लंबे समय तक रुक सकते हैं, परंतु परमेश्वर भविष्यवाणी करके और निश्चित बातें कहता है कि ये घटित होंगी। मनुष्य संस्था बनाता है, मनुष्य को लेकर ठीक बैठाता है। उन्होंने विश्वास किया था कि मसीह आने वाला था। ओ वे यहूदी, ओ प्रभु निश्चय ही। परंतु यीशु जिस मार्ग से आया, वो आया। उन्होंने कहा, ये वो नहीं हो सकता। वे वचन को समझने में असफल रहे। अब यीशु वचन के विरुद्ध नहीं आया, क्या वो आया? परंतु वो संस्था के वचन अनुवाद के विरुद्ध आया। मूसा वचन के विरुद्ध नहीं आया, वो ठीक वचन के साथ आया, परंतु कोरा इसे देखने में असमर्थ रहा और इसी प्रकार सब में रहा। अब देखिए, आज का ये संदेश कुछ और नहीं कह सकता। हमारे पास सत्य है और हमने ये वो ले लिया है। इसे तो उसके वचन में पहले ही बता दिया जाना है और तब वचन के सामने आने के पश्चात इसे ठीक प्रकार से वचन से प्रमाणित होना चाहिए। यीशु ठीक प्रकार से परमेश्वर प्रमाणित था वचन के द्वारा। उसने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो मेरे दिन को भी जानते। अच्छा, तो क्या भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में कहा? सारे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा कि वो क्या था, और तो भी उन्हें अंधा कर दिया, वे इसे नहीं समझ सके। समझे? परंतु यीशु जो था, नहीं, मैं टेप के लिए कहना चाहता हूँ और आपके लिए भी। देखिए, संदेश वाहक आज के संदेश के साथ। अब यदि आप जाएं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कहते हैं, हमारे वो हैं महिला, केवल सबत का पालन कीजिए। आप मुझे वचनों में दिखाएं। कुमारी एडी बेकर कहती हैं, उनके पास ये था, मुझे ये दिखाएं। यहोवा विटनेस ने कहा कि ये उनके पास है, इसे मुझे दिखाएं। समझे? मेथोडिस्ट कहते हैं कि ये उनके पास है, इसे मुझे दिखाएं। बैप्टिस्ट कहते हैं कि उनके पास है, मुझे दिखाएं। मुझे कोई सी भी संस्था दिखाए, मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ, वे प्रत्येक परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, प्रत्येक उनमें विरोधी है, मनुष्य के रीति रिवाजों को सिखा रहे हैं बजाय परमेश्वर के वचन के। मैं उनमें से एक को भी नहीं जानता जो कि इन बातों को स्वीकार करेगा, जो कि वास्तव में बाइबल में जैसी लिखी है, ये ठीक बात है। परंतु जब किसी ने आकर कहा मेरे पास आज का संदेश है, उसे ठीक प्रकार से पहले दिखाई पड़ना और उसके आने के लिए पहले से बताया जाना चाहिए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाहर निकल कर आया, उन्होंने कहा क्या तू मसीह है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। कहा क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। उसने कहा तू कौन है? वो अपने आप को प्रमाणित कर सकता था, उसके पास समय का संदेश था। उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ, जैसे कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है। अब यदि मेरा जन्म और जीवन उसके साथ मिला नहीं खाए तो मुझे ग्रहण मत करो। जब यीशु आया यही चीज और यही बात थी, संदेशवाहक संदेश के साथ, परमेश्वर के द्वारा संदेश पहले से बताया जाना चाहिए। और तब परमेश्वर इस दूत के द्वारा बोलता है एक प्रमाण कि ये सत्य है। क्या आप इसे सुनते हैं? क्या आप इसे समझते हैं? इसे समझिए। पहले इसे यहोवा यूं कहता है होना चाहिए, पहले से बताया गया। और तब दूत संदेश के साथ वैसे ही जैसा ठीक परमेश्वर ने कहा होना चाहिए कि ये उस समय घटित होगा। मूसा भी इसी प्रकार से था। यही कारण था कि वो मुंह के बल परमेश्वर के सम्मुख गिर पड़ा और कहा परमेश्वर तूने मुझे भेजा है। उसने कहा इस झुंड से स्वयं को अलग कर। देखिए मेरा क्या अर्थ है, ये सदा से ऐसी चीज रही है जो मनुष्य के मस्तिष्क को घुमा देती है और उन्हें परमेश्वर की इच्छा से अलग कर देती है। स्मरण रखें, पहले से उसके वचन के द्वारा बताया गया है और सही प्रकार से उसके वचन के द्वारा प्रमाणित। अब यीशु ने कहा यदि मैं परमेश्वर के कार्य ना करूं तो मुझ पर विश्वास ना करो। देखिए यदि मैं चूकता हूं, कहा तुम में से कौन मुझ पर पाप के लिए दोष लगा सकता है? तुम में से कौन दिखा सकता है कि मैं एक अविश्वासी हूं? निकोदिमस ने कहा हम जानते हैं कि तू रब्बी है, तू परमेश्वर से निकल कर आया है, क्योंकि कोई उन कार्यों को नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो, समझे? इसलिए ये दर्शाता है कि वो एक विश्वासी था। अब हम जो कलीसिया का इतिहास जानते हैं, अब सोचने की अवस्था में आ जाएं। अभी अधिक देर नहीं हुई है, देखा? इसलिए जरा ध्यान से सुने और मैं प्रयास करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ टेप को ध्यान पूर्वक सुने। अब किसी ने कभी भी कलीसिया का इतिहास पढ़ा है वो ये जानता है पहली बार मसीहत जब कभी संस्थागत हुई वो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। इससे पहले यदि कोई समय था, मैं चाहता हूँ कि कोई इतिहास लाकर मुझे दिखाए। मैं पॉल बॉयड का घनिष्ठ मित्र हूँ, बहुत से महान इतिहासकार। मैंने अपने अध्ययन में देखा है दी पोस्ट नीसियन काउंसिल, दी नीसियन काउंसिल, द नीसियन फादर, कलीसिया के सारे पवित्र लेख जो मैं जानता हूँ। 33 वर्ष मैंने उनका अध्ययन किया है, उन्हें देखा है। कभी भी कोई संस्था नहीं थी। कैथोलिक कलीसिया संस्थाओं की माता है। हम जानते हैं कि ये सत्य है। कभी भी कोई कलीसिया संस्थागत नहीं हुई, नामधारी कैथोलिक कलीसिया तक नहीं थे। और कैथोलिक शब्द के अर्थ विश्वव्यापी हैं। और उन्होंने राजकीय कलीसिया धर्म बनाया और रोम के नामधारी को सबके ऊपर बनाया। और उस समय इसके पास रोम का जीता हुआ सबसे अच्छा भाग था। ये राजकीय कलीसिया थी और वे जो इसको नहीं मानेंगे उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। नीसियन काउंसिल के 15 लहूलुहान वाले दिन, युद्ध वाले दिन जब वे उन पर चढ़ गए, कैथोलिक कलीसिया पहले ये क्यों आरम्भ हुई, क्यों हम सब ये जानते हैं, मैंने ये यहाँ पर सिखाया है। कैसे वास्तव में एक्विला और प्रिस्किला पास्टर थे। एक्विला रोम की कलीसिया का पास्टर था। जब पवित्र आत्मा पेंतिकॉस्ट पर गिरा तो ये हर यहूदी पर जो स्वर्ग के नीचे हर राष्ट्र में था उन पर गिरा। परंतु उसके कुछ दिनों के पश्चात पतरस को घर की छत पर दर्शन मिला कि कुर्नेलियस के घर जाए, एक रोमी, एक साधारण मनुष्य। उसने प्रार्थना की और उस पर पवित्र आत्मा उतरा। कुछ समय पश्चात विशिष्ट व्यक्तियों ने लेना आरंभ किया। एक्विला और प्रिस्किला रोम गए और उन्होंने संस्थागत किया, या कभी भी संस्थागत नहीं हुए, परंतु पहली रोमन कलीसिया को व्यवस्थित किया। और जब उन्होंने किया उनके पास उनके भाई और बहनें थीं, और क्लोदियस ने अपने राज्य में से सारे यहूदियों को रोम से निकाल दिया। और यही वो समय है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया कहती है कि पतरस रोम में था। मुझे एक भी वचन का लेख दिखाएं कि पतरस कभी रोम गया था, या कोई इतिहास कहता है कि वो वहाँ था। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वहाँ नहीं था और यही मैं विश्वास करता हूँ। और कैसे पत्रस एक यहूदी कभी भी वहाँ मूर्ति पूजक और चीजें रख सकता था जो उसके पास हैं, मूर्तियों को पूजना आदि? कहाँ, देखिए, वो कैसे यहाँ अपनी ही शिक्षा के विरुद्ध जा सकता था? निरर्थक बात। प्रोटेस्टेंट भी, इससे अधिक और कुछ नहीं। प्रतीक्षा कीजिए, हम इसे थोड़ी देर बाद लेंगे, एक एक करके, प्रभु चाहेगा तो। ध्यान दें, अब ध्यान दें, हम पाते हैं कि हर बार कलीसिया कहती है कि पत्रस रोम में था। इतिहास कहता है और बाइबल भी कहती है कि क्लोदियस ने आज्ञा दी थी कि सारे यहूदी रोम से बाहर निकाल दिए जाएं, और पौलुस इफिसुस से होता हुआ और ऊपर के किनारे की ओर आया। उसने इन चेलों को पाया और वहाँ वो इन एकुला और प्रिस्किल्ला से मिला। उनके जाने के पश्चात तब रोमी भाई लोग इस कलीसिया में अपने ही विचार बनाने लगे और उन्होंने मूर्ति पूजा उसमें मिला दी। और तब कॉन्स्टेंटाइन, उसकी माँ जो कि वास्तविक मसीही थी और अपने लड़के के लिए भी आशा करती थी, परंतु वो राजनीतिज्ञ था, और उसने देखा अधिकांश रोमी या उनका बड़ा भाग या निर्धन वर्ग ने पहले ही उद्धार को मसीह के द्वारा स्वीकार कर लिया है। और तब वे लोकप्रिय होने लगे क्योंकि वे वीनस को ले रहे थे और मरियम को रख रहे थे और जुपिटर को लेकर पत्रस को रख रहे थे और आदि आदि इस प्रकार से, और चेले, और ये बहुत ही लोकप्रिय धर्म था और वे बहादुर थे और वे मसीह मर रहे थे। और कैथोलिक कलीसिया ने कहा, आरंभ से हम ही हैं। ये बिल्कुल सही है, कैथोलिक कलीसिया पेंटिकॉस्टल के दिन आरंभ हुई थी, परंतु उसे यहाँ किसने बाहर कर दिया? वो संस्थागत हुई और निश्चित मत वचन से इसमें अंदर डाल दिए। और अंतिम हट मत, आप जो 10 वर्ष पुराने लोग हैं स्मरण कर सकते हैं, मरियम का स्वर्गारोहण लगभग 10 वर्ष पहले। एक और विशेष मत कलीसिया में दे दिया बजाय वचन के, ये हट मत है। और वे अभी आपको समझा देंगे, वे चिंता नहीं करते कि वचन क्या कहता है, ये वो जो कलीसिया कहती है। उन पादरियों ने मुझे बताया, कहा परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन में है। उसने कहा बाइबल तो कैथोलिक कलीसिया का आरंभ का इतिहास है। मैंने कहा तो फिर मैं एक आरंभिक कैथोलिक हूँ। मैंने कहा ये मुझे आपसे अधिक कैथोलिक बनाता है बजाय आपके पादरी होते हुए भी, समझे? मैंने कहा यदि ये है तो मैं वही हूँ। मैंने कहा आप देखिए, मैं ठीक वही विश्वास करता हूँ जो प्रेरितों ने सिखाया, आप उसका विश्वास करते हैं जो मनुष्य ने इसमें घुसा दिया, और ये ठीक इस प्रकार से हो गया। निश्चय ही ये था, ये ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ गया। अब इतिहास पर ध्यान दें, तब उन्होंने इसमें हट मत मिलाने आरंभ कर दिए। और जब पौलुस आया, इतिहास के अनुसार वो पहली कलीसिया से मिला तक नहीं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा आरंभ नहीं कर सकता था। और उसने दूसरी कलीसिया से भेंट की, जो कि उन्होंने दूसरी कलीसिया रोम में स्थापित की थी। और जब निशियन काउंसिल आई, जहां पर कॉन्स्टेंटाइन ने राज्य को जोड़ने का विचार देखा, वही बात जो अहाब ने इजाबेल के साथ की थी, वहां विवाह किया, समझे? और जब उसने अपने लोगों को आपस में संगठित करने का अवसर देखा और तब उसमें से बड़ा सामर्थी राष्ट्र बनाया, उसने सोचा वे अपना धर्म पा लेंगे, इसलिए उसने उन्हें राजकीय कलीसिया धर्म बनाया। और जब उन्होंने वो निशिया काउंसिल की और ये प्रश्न उठे कि परमेश्वर एक था या तीन, उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, ये सारे दूसरे प्रश्न यहाँ ये दृश्य ले आए। और जब ये हुआ तो उनमें से कुछ भविष्यद्वक्ता खाली हाथ, केवल एक भेड़ की खाल अपने चारों ओर लपेटे निकल कर आए और वे पेड़ के पत्ते खाते थे, ठीक बात है, परंतु वे बड़े विशिष्ट लोग, उन्होंने पहले ही अपना कार्य कलीसिया में कर लिया था, उन्हें संसारिक बुद्धि से चुप करा दिया, परंतु उनके पास यहोवा यूं कहता है था। वो पागान के अंधकार में चली गई लगभग 1000 वर्षों के लिए, परंतु वो फिर से खिलने के लिए तोड़कर बाहर आई, ये ठीक बात है। आप इसे मार नहीं सकते, मैं इसे पुनः स्थिति में ले आऊंगा, प्रभु ने कहा। इन सारे वर्षों में इन बातों ने खा लिया, उन नामधारियों ने निश्चित मत मिला दिए। और ये करने के लिए, निश्चित मत मिलाने के लिए, केवल एक मार्ग है कि कोई भी कलीसिया, एक ही मार्ग है कि कोई भी नामधारी कलीसिया जो परमेश्वर के वचन से हट सकती है, कि उसमें निश्चित मत मिला दिए जाए बजाय पवित्र लेखों के। आपके रीति रिवाजों को बनाने का यत्न करना या आपकी कलीसिया की शिक्षा, चाहे वो पवित्र वचनों के विरोध में हो, तब आप कैसे कैथोलिक कलीसिया पर दोष लगा सकते हैं जबकि आप भी वही चीज कर रहे हैं जो उन्होंने किया? क्या आप समझ गए? ठीक है। अब जरा सोचें कि वचन असफल नहीं हो सकता। हठमत आरंभ से ही एक झूठ है, और जब आप नामधारी को स्वीकार करते हैं तो आप हठमत ले चुके, क्योंकि ये कुछ मिलाया हुआ है। ये पवित्र वचन नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में नहीं है, संस्था जैसी कोई वस्तु नहीं है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्राधिकार देता हूँ कि समस्त जगत में जाओ, संस्था बनाओ। नहीं श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये करना पवित्र वचनों को अस्वीकार करना है। जब ये हो गया तो ये बदल गया था, कलीसिया जन्म के द्वारा से कलीसिया निश्चित मत और मतसार, कलीसिया नहीं, मुझे क्षमा करें, धर्मशाला। आप कलीसिया में जन्म लेते हैं परंतु ठहरने के स्थान में सम्मिलित हो जाते हैं। ये बैप्टिस्ट कलीसिया नहीं है, मेथोडिस्ट कलीसिया, पेंटिकॉस्टल कलीसिया। ये बैप्टिस्ट ठहरने का स्थान, पेंटिकॉस्टल ठहरने का स्थान, और मेथोडिस्ट धर्मशाला। आप उनमें सम्मिलित होते हैं, आप कलीसिया में सम्मिलित नहीं होते। ऐसी कोई चीज नहीं है, आप इसमें जन्म लेते हैं। निकोदीमस को ये बताया गया, इसलिए आप देखें कि आप कहाँ हैं। इसी कारण मैं इसके विरोध में, इसमें के लोगों के विरोध में नहीं, वो तंत्र जिसके मैं विरोध में हूँ, क्योंकि वे नहीं कर सकते। उनमें से कोई प्राचीन या कुछ और, उनमें से एक कलीसिया कुछ प्रचार करती है जो बाइबल में है, वो उनके शिक्षा मत के विरोध में है, उस अधिकार पत्र के जो उनकी कलीसिया में है, वो ठीक इसी प्रकार से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ श्रीमान, उनमें से कुछ इतने अप्रिय हैं कि वे दूसरी कलीसिया में बेदारी भी नहीं आने देते जब तक कि वो उनका अपना व्यक्ति ना हो। वे ऐसे क्यों हैं? कोई एक बार एक प्रचारक को देने वाला था, ठीक यही इसी राष्ट्र में एक छोटा पुराना प्रचारक वहाँ गली में खड़ा था, चिल्ला और भीख मांग रहा था कि प्रायश्चित करो, और कह रहा था आओ मसीह को ग्रहण कर लो और पवित्र आत्मा से भर जाओ और इस प्रकार की बातें। और कोई पेंटिकॉस्टल संस्था में से आया और उस व्यक्ति को $1 उसके हाथ में दिया और प्रायश्चित के लिए जाना था, क्योंकि उसने अपनी कलीसिया के विरोध में व्यभिचार किया था। कैथोलिक के विषय में बातें करते हैं, ये ठीक बात है, और आप जानते हैं कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ, या ये कलीसिया करती है, जो भी है, ठीक है। क्या ये पवित्र वचनों को अस्वीकार करने के लिए है? जब ये हो जाता है तब ये बदल जाता है। जब आप निश्चित मत मिलाते हैं और संस्था में सम्मिलित होते हैं तो आप स्वयं ही अपने पहले निश्चित मत को स्वीकार कर चुके, क्योंकि ये वचनानुसार नहीं है, इसलिए ये कुछ मिलाया हुआ है। और निश्चित मत जो कुछ मिलाया हुआ है किसी का स्थान लेता है, ये जन्म का स्थान लेता है। जब आप एक नामधारी संस्था को स्वीकार करते हैं तो आपने निश्चित मत मिला दिया, ठीक है। जब ये हो जाता है तो ये कलीसिया जन्म द्वारा से बदलकर निश्चित मत या मतसार की धर्मशाला में बदल जाता है, क्योंकि देखें ये अपने में एक हट मत है बजाय आत्मिक होने के। अब यीशु ने कभी नहीं कहा समस्त संसार में जाओ और नामधारियों को बनाओ, जाओ लोगों को मिलाकर संस्थागत करो। उसने कहा जाकर चेले बनाओ। आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। इसलिए आप देखिए, आप कुल मिलाकर बाहर हैं। सुनिए, इधर ध्यान दें, आइए हम इसे किसी चीज पर समाप्त करें, कुछ और सख्ती इस समय दौड़ाऊं। कितनों के पास ग्रीक यूनानी शब्द कोश है, एम्फेटिक डिग्लॉग, ग्रीक के पुराने लेख से, ठीक है, इसे पढ़ें। जिस भी विद्वान को चाहे लें, पुस्तकालय में जाएं और यूनानी का शब्द कोश लें, प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ें, और जब आप यहाँ पढ़ें, यहाँ किंग जेम्स का रूपांतर कहता है, और ये वो मुझे आत्मा में ले गया और मैंने बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक स्त्री को पशु पर बैठे देखा जो कि निंदा के नामों से भरा था। अब किंग जेम्स ने यही कहा, परंतु मूल अनुवाद ने कहा मुझे आत्मा में ले गया और मैंने एक स्त्री देखी जो ईश निंदा के नामों से भरी हुई थी। निंदा के नामों का ये बड़ा अंतर है और ईश निंदा के नाम। अब ध्यान दें, हम सब समझते हैं और जानते हैं कि रोम की कलीसिया 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है, संसार की सामर्थ्यों को नियंत्रित कर रही है, और वो एक वेश्या कहलाती है, और वो वेश्याओं की माँ है। ध्यान दें, वेश्या क्या है? एक पुरुष नहीं हो सकता, ये तो एक स्त्री ही है। इसलिए यदि ये स्त्री है तो इसे एक कलीसिया होना है, वो वैश्याओं की माता है वैसी ही जैसी वो थी। और देखिए, ध्यान दें, उसमें स्त्रीलिंग, ये समझ लें उसमें ईश निंदा के नाम थे। ये क्या है? अब सेवकों, यहाँ और टेप पर अपनी शांति बनाए रखें। वो ईश निंदा के नाम क्या है? मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, पेंटिकॉस्टल आदि आदि। ईश निंदा के नाम क्योंकि ये संस्थाएं हैं परमेश्वर की दृष्टि में वेश्या का स्थान, जैसे कि वो थी। और वे लोगों के झुंड को कहते हैं, क्यों? वो तो मेथोडिस्ट है और ये करता है, वो पेंटिकॉस्टल है और ये करता है, ये प्रेस्बिटेरियन है, ये करता है। वे सारे वर्ष सब कुछ करते हैं, आप ये जानते हैं। और ये क्या है? ये नाम है जो कि मसीह के समान होने चाहिए और मसीहत के नाम से पुकारे जाने चाहिए। और ये निंदा के नाम है। वे कलीसियाएं नहीं हैं, वे झूठ मूठ में कलीसिया कहलाती हैं, वे ठहरने की धर्मशालाएं हैं। अब आप देखिए, मैं क्यों संस्थाओं के विरोध में हूँ, लोगों के नहीं, संस्था का तंत्र। देखिए, ईश निंदा के नाम, ध्यान दें, इन धर्मशालाओं के झूठ मूठ में कलीसिया कहलाती हैं। मेथोडिस्ट कलीसिया, बैप्टिस्ट कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया, पेंटिकॉस्टल कलीसिया, लूथरन कलीसिया, यूनाइटेड ब्रदरन कलीसिया, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये वचन के अनुसार नहीं है। केवल एक कलीसिया है और आप उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आप उसमें जन्म लेते हैं, आप इसके लिए पहले से चुने हुए हैं। यीशु मसीह की कल्पित देह नहीं, बल्कि यीशु मसीह की रहस्यमय देह इस पृथ्वी पर वचन के साथ प्रकट हो रही है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, वे किसी से भी संबंधित नहीं हैं। उनके बीच में से बाहर निकल आओ, उसने कहा है। जी हाँ, अब जल्दी से ध्यान दें। मैं आपको थकाना नहीं चाहता, परंतु यदि आप मुझे थोड़ा सा और समय दें, मैं जितनी जल्दी हो सकता है जाऊंगा। परंतु मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें, ताकि आप इसमें चूक ना जाएं, समझे? स्मरण रखें, माँ रोम ईश निंदा के नामों से भरी हुई पाई गई वैश्याओं की माता। तब यदि वे वैश्याएं हैं, तो वैश्या क्या है? वैश्या क्या है? वैसी ही जैसे वैश्या, ये स्त्री जो अपने विवाह की प्रतिज्ञा के प्रति झूठ में जीवन बिताती है। कोई भी कलीसिया जो मसीह की कलीसिया होने का दावा करती है और परमेश्वर के वचन का इनकार करती है, तो वो अपने विवाह के प्रतिज्ञा के प्रति झूठी है। तो वो निश्चित मत को मिलाकर व्यभिचार करती है, संसार के साथ व्यभिचार, अपनी बुद्धि से, बजाय मसीह और पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करने के। और वो वैश्याओं की माता जिसने यही किया। तवा डेगची को चिकना नहीं कह सकता, आप जानते हैं। देखिए, छह में से एक और दूसरों में से आधा दर्जन। कुछ लोग साथ साथ चलते हुए कैथोलिकों का उपहास बनाते हैं और स्वयं वैसी ही चीजों से संबंधित हैं। वो पानी के गलत बपतिस्मे की माँ थी। वो पवित्र आत्मा के झूठे प्रमाण की माँ है और आप उसका अनुकरण करते हैं। अब आइए देखें, भाई ब्रैनम, क्या ये सत्य है? एक क्षण, अपनी शांति बनाए रखें। देखिए, वो ईश निंदा के नामों की माँ है, उन धर्मशालाओं की जिनमें लोग सम्मिलित हुए और किसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने के द्वारा उस पर निंदा लाते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, स्त्रियां छोटे छोटे बालों के साथ रंगे हुए गायन मंडली में गाते हैं, सिगरेट पीते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, संसार की सब प्रकार की गंदगी, और ये अविश्वासी के लिए ठोकर हैं। क्या तिमोथी नहीं बोलता इसके विषय में, वो पवित्र आत्मा? ध्यान दें, देखिए, वो रोम इनमें से प्रत्येक की माँ है। आपने अपने संस्था में ठीक वही किया जो उस स्त्री ने किया, वचन के बदले में निश्चित मत, क्योंकि कुछ मनुष्यों ने एक साथ मिलकर इसे तय किया है, प्रेस्बिटेर और बिशपों और आदि आदि ने ये कहा कि इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक यही रोम में घटित हुआ। और मेरे पादरी भाइयों, अपने परमेश्वर का पूरा वचन स्वीकार करने का यत्न करें। और देखिए, आप कहाँ जाएंगे? सीधे दरवाजे के बाहर। अब हम देखेंगे कुछ क्षणों में परमेश्वर आपको बताए ना बताए, समझे? ठीक है, देखिए, वो हर चीज की माँ है क्योंकि वही थी जिसने सबसे पहले पवित्र शास्त्र के लेख ले लिए और निश्चित मत मिला दिया, क्योंकि उसने अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया जिसने जीवन के वचन को प्रमाणित किया, क्योंकि उनके बुद्धिमान तेज मनुष्य रोम के राजा और आदि जिन्होंने मसीहत को स्वीकार किया परंतु इसे अपनी ही विधि में स्वीकार किया, समझे? ये ठीक बात है, वे इसे अपने ही तरीके में चाहते हैं। नामान अपने ही देश के पानी से अपने कोढ़ से छुटकारा पाना चाहता था, उसने यर्दन का कीचड़ वाला पानी पसंद नहीं किया, परंतु यदि उसने अपने कोढ़ से छुटकारा पाना था तो उसे उस कीचड़ में जाना था, ठीक वैसे ही जैसे भविष्यद्वक्ता ने उसे बताया। देखिए, परमेश्वर किसी का तरफदार नहीं, ध्यान दें, वो पहली नामधारी थी, उसकी पुत्रियों को देखें, वही कार्य किया, परमेश्वर के वचन के बदले मतसार और निश्चित मत मिलाए। मुझे ना बताएं, मुझे एक भी दिखाएं जो इससे हटकर नहीं है, मुझे एक भी पादरी दिखाएं जो सत्य को स्वीकार करेगा कि वे उसे बाहर ना निकाल दें। जब तक कि आप इतने लोकप्रिय ना हो जाएं, आप जानते हैं आपकी लोकप्रियता पर ये सब आपको पकड़े रहेगा या कुछ ऐसा ही, ये ठीक बात है। अब प्रकाशित वाक्य 18 को देखें कुछ मिनटों के लिए, अगले पद में, अगले अध्याय प्रकाशित वाक्य 17 के बाद इसकी खोजबीन की और इस कुमारी बाबुल के भेद को दर्शा दिया। प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय ये व्याख्या करता है कि कलीसिया है और 7 पहाड़ों पर बैठती है, वेटिकन नगर, जो पृथ्वी के सब राजाओं पर राज्य करती है। यही वो ठीक बात है, और राष्ट्रपति पर भी और आदि आदि। ओ, इसलिए ये परंतु वो वहाँ है और समस्त संसार के धन को अपने हाथों में पकड़े बैठी है। बिल्कुल यही ठीक बात है, उसके साथ कौन युद्ध कर सकता है, ये ठीक बात है, हम सब ये जानते हैं, परंतु आप ऐसी चीज से क्यों संबंध रखते हैं जो उससे संबंधित है। अब 18वें अध्याय में ध्यान दें, ठीक उसके बाद का अध्याय, जब उसका भेद खोल दिया गया, परमेश्वर के मंदिर में बैठती है। अब यहाँ जेला ब्रेटमैन, क्या आज रात्रि आप यहाँ हैं जेला? अब वो उस स्थान में लाई है आवर संडे विजिटर कैथोलिक अखबार, और कैथोलिक अखबार एक सेवक को उत्तर दे रहा था, कहा क्या आपने कहा आदरणीय ये हुआ रोमन अंकों में वहाँ वेटिकन में या पोप के सिंहासन पर लिखा है विकेरियस फिलिदी, जिसका अर्थ है कैथोलिक बिशप क्षेत्र में ये भविष्य के लेख का पशु अंक है। क्यों उसने कहा निश्चय निश्चय ही ये है, ये बिल्कुल ठीक 666 का अक्षर विन्यास है, और रोमी क्षेत्र इसे स्वीकार करता है, वो यही करता है, परंतु यहाँ पर उसका उत्तर है तेज तरार बुद्धि से पूर्ण, परंतु आप जानते हैं आपका नाम निश्चित भाषा में इसी चीज का अक्षर विन्यास करता हो। इस व्यक्ति ने कहा मेरा लगभग किसी भाषा में यही चीज है, इसने इसका अक्षर विन्यास किया, कहा मैं भी लगभग 666 हूँ, कहा वहाँ सैकड़ों होंगे, कहा हर बार कोई चीज उठती है किसके पास 666 है, और कहा आदरणीय क्या आप जानते हैं कि किसी भाषा में आपका नाम अक्षर विन्यास में मसीह विरोधी हो सकता है। कहा आप ऐसी चीजों को क्यों देखते हैं, बुद्धिमानी को देखिए, ध्यान दें, परंतु पवित्र आत्मा अधिक अच्छा जानता है। ये हो सकता है कि मेरा नाम का अक्षर विन्यास 666 बनता हो, परंतु मैं बाकी योग्यताओं से मेल नहीं खाता, मैं पहाड़ पर नहीं बैठता, मैं ये बातें नहीं कहता, मैं प्रबंधक नहीं हूँ। आप देखें कि ये ठीक बात है, यही वो है जिसके विषय में वो बातें कर रहा है, इसलिए आपकी संसारिक बुद्धि कहीं पर नहीं। श्रीमान, ये ठीक बात है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं बाकी से मेल नहीं खाता, परंतु वो खाता है, परमेश्वर के मंदिर में बैठता है, स्वयं को परमेश्वर दिखाता है, और 7 पहाड़ों पर बैठती है, मैं 7 पहाड़ों पर नहीं बैठता। यदि इसका अक्षर विन्यास 666 है तो बाकी सबसे मिलान नहीं खाता, परंतु वो मिलता है, देखिए आप वही हैं, समझे? इसलिए जो पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है और कोई विचार नहीं करता कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये आप नहीं बोल रहे, ये पिता है, इसलिए कैसे आपकी बुद्धि और आपका नया जन्म ऊपर से हो सकता है और इस पृथ्वी की बातों से मेल खा सकता है? इसमें क्या सामर्थी जादूगर है? क्यों वे हर छोटे से ऊंचे नीचे को जानते हैं? मूसा कैसे खड़ा हो सकता था जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? लाठी को फेंक कर सांप में बदल दिया और फिर जादूगर आए और वही चीज की। परंतु मूसा शांत खड़ा रहा ये जानते हुए कि उसने परमेश्वर का वचन पूरा किया है और उसके सांप ने बाकी सांपों को खा लिया। देखा, इसलिए जब आपने पालन किया और पाया, वो क्या कर सकता था जब वो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में मार्गदर्शक बनकर ले गया और वहाँ लाल सागर ने उन्हें अपने में समा लिया, परंतु परमेश्वर का मार्ग उसमें से होकर जाता था। आमीन। कहा, शांत रहो और परमेश्वर की महिमा को देखो। जब वो अपने कर्तव्य के मार्ग पर थे, वचन के मानने पर थे, वहाँ खड़े हुए उसे खुलते हुए देखा। आमीन। मैं 53 वर्ष का हूँ, लगभग 33 वर्षों से उसकी सेवा कर रहा हूँ। इच्छा है कि 10 लाख वर्ष उसकी सेवा के लिए मिले। मैंने अभी तक उसे असफल होते नहीं देखा जब उसके वचन का पालन किया गया। ये ठीक बात है। अब देखिए, तुरंत उसके पाप के पश्चात उसके भेद खुल गए। हमारे पास ये बहुत समय से है, हम ये जानते हैं। अब अगला अध्याय प्रकाशित वाक्य 18 को देखें। क्या मैं इसे एक मिनट के लिए देखूं? ये अच्छी बात हो सकती है, ये अधिक नहीं परंतु कुछ मिनटों लंबा है और हो सकता है ये आपके लिए अर्थपूर्ण हो। मुझे आशा है कि ये है। अब हम यहाँ 17वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब ध्यान दें, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। देखिए उसे देखते हुए, वो इतनी महान सुंदर चीज थी, और वो वैश्याओं की माता थी। वैश्या धर्म, नामधारी, ठीक वही जो उसने किया। देखिए, क्योंकि उन्होंने निश्चित मत उसमें घुसा दिए, ठीक जैसे उस स्त्री ने किया। अब प्रकाशित वाक्य को देखिए, अब ये 17वां अध्याय है और 18वें पद में समाप्त होता है। अब ध्यान दें, इन बातों के बाद जब उसका भेद खुल चुका, इन बातों के बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था। अब ये दूसरा संदेश वाहक नीचे आता है, अगला अध्याय, उसका भेद खुल गया। अब ये उसके भेद का खुल जाना है और उसके बालकों का भेद। देखिए, अब हम ठीक समझते हैं कि उसे किसने वेश्या बनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के विरोध में व्यभिचार किया और इसी ने इसे संस्था बना दिया। वो बाइबल की कलीसिया होकर स्थिर नहीं रह सकती और इसे स्वीकार करे, और न ही कोई और संस्था कर सकती है। वो इसका प्रत्येक वचन नहीं लेती जिस प्रकार ये लिखा है। कभी भी बाइबल कलीसिया नहीं रही, और इनमें कोई भी इस प्रकार नहीं है। मैं इस विषय में सब कुछ जानता हूँ, एक भी नहीं। इसलिए देखिए, जैसे जैसे ये चीजों को संस्थागत करती है, दोनों से, वचन और प्रमाणों के द्वारा, वो वही मर जाती है। वो निश्चित मत को स्वीकार करती है। अब देखिए, अब ये जो घटित हुआ, परमेश्वर ने इस 18वें अध्याय में एक बलि दूत भेजा। इस भेद के खुल जाने के पश्चात एक बलि दूत या संदेश वाहक। यहाँ देखिए, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा कि गिर गया, दुविधा, बड़ा बाबुल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। देखिए, तुरंत उसके भेद खुल जाने के पश्चात ये कौन थी, वो क्या थी, उसकी पुत्रियां कौन थी, ये सारे भेद मालूम चल गए। तब परमेश्वर ने एक दूत, एक संदेश वाहक भेजा, क्या कि पुकारे, बाहर आ जाओ, बाहर निकल आओ। उस समय का संदेश, मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसकी विपत्तियों में भागी ना हो। वो उसे श्रापित करने जा रहा है, उसमें से बाहर आ जाओ। परमेश्वर ने बहुत से सामर्थी दूत भेजे या संदेश वाहक, और उसकी ज्योति कोने में नहीं थी, ये पूरी पृथ्वी पर फैल गई। उसमें से बाहर निकल आओ। क्या वो स्त्री और उसकी बहनें भी पृथ्वी को ज्योतिमय करे और उसके लोगों को उसमें से बाहर बुला ले।
You know that's the truth.
अब आप जानते हैं कि ये सत्य है. एक संदेश वाहक स्वर्ग से भेजा गया कि परमेश्वर के लोगों को बाबुल से बाहर बुला ले और उसकी ज्योति से जगत में उजियाला हो गया महान पवित्र आत्मा. ध्यान दें, बाइबल ने कहा वो एक पिंजड़ा है और घृणित अशुद्ध पक्षी पकड़ रखे हैं.
Not eagles now.
अब उकाब नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं.
Vultures.
Unclean, गिद्ध, hateful birds. अशुद्ध घृणित पक्षी, यही जो उसने अपने चारों ओर पकड़कर बंद कर रखे हैं. वो उनसे पूरी तरह से भरी हुई है, पूरा पिंजड़ा भरा हुआ है. किससे? ईश निंदा के नामों से, वचन के विरुद्ध. दूसरा तीमोथी 3, पवित्र आत्मा बोल रहा है अंतिम दिनों में वे विश्वास को छोड़ देंगे और बहकाने वाली आत्माओं की ओर ध्यान देंगे. ये भी कहा गया है, पवित्र आत्मा ने इस विषय में बोला है, अंतिम दिनों में वे ढीठ, घमंडी, घृणा से भरे हुए. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप हमसे संबंधित हैं या तुम्हारा नाम हमारी पुस्तक में है, नहीं तो आप नष्ट हो गए होते. घृणित, अशुद्ध. मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आघात नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं भलाई कर रहा हूँ. घृणित, अशुद्ध पक्षी, उसने इन्हें बंद कर रखा है. स्मरण रखें, परमेश्वर उकाब है, वो स्वयं को उकाब कहता है और उसने याकूब को एक उकाब कहा और हम उसके उकाब बच्चे हैं. आमीन. वो अपने भविष्यद्वक्ताओं को उकाबों कहता है और ये स्वर्गदूत उसको प्रकट करने के लिए नीचे आया और बाहर बुलाने के लिए. जैसा कि मेरा छोटा सा संदेश, उकाब अपने घोंसले को हिलाता है. वो पुराना उकाब पिछवाड़े उद्भूड़ी मुर्गी के आसपास सारे समय घूम रहा था कुड़ुक कुड़ुक करते हुए, परंतु वो उन चीजों को नहीं खा सकता था जो उसके समाज में था. और महिलाओं के रंगे हुए चेहरे, कटे हुए बाल और छोटे वस्त्र ये नहीं कर सकता, परंतु वो ये कुछ नहीं जानता, केवल पुरानी मुर्गी, उस कुड़क कुड़क की आवाज को छोड़. परंतु एक दिन माँ उकाब ने उसे पाया, वो चिल्लाई और उसे बाहर बुलाया, कहा पुत्र तुम उनमें के नहीं हो, उनमें से बाहर आ जाओ. कहा माँ मैं क्या कर सकता हूँ? कहा अपने पंखों को मारो और आरंभ करो. पहली छलांग में उसने खम्भे में टक्कर मारी, संस्था के ठीक बीच में. कहा पुत्र तुम्हें इससे ऊंचे पर आना होगा या फिर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी. अपने पैरों को भूमि पर से उठाना होगा. वो उसे उड़ान पर ले जाने वाली है. उसने पाया कि वो उड़ सकता है. वो उसे बाहर बुलाने के लिए आई. ये ठीक बात है, परंतु ये माँ बाबुल ने स्वयं चूजों का झुंड पकड़ा हुआ था. चिकने चूजे, रंगे हुए, कटे हुए बाल, स्वयं को मसीह कहते हैं. इनके पास इनसे भरा हुआ पिंजड़ा है. आप प्रचारक हो जो प्रचार मंच पर खड़े हो और वे स्त्रियां भी वहीं खड़ी हैं अपने नामधारी को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे लिए लज्जा की बात है. परमेश्वर तुमसे इसका उत्तर मांगेगा, इससे बाहर निकलो. मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है. घृणित, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के प्रेम से अधिक सुख विलास के चाहने वाले, यीशु के समान होने के बजाय संसार के समान, इनसे पिंजड़ा भरा हुआ है. जब आप एक स्त्री को बहुत से श्रृंगार के साथ देखते हैं तो ये दर्शाने जा रहा है कि वो अंदर से खोखली है, वो अंदर से गलत है. ये बिल्कुल ठीक बात है. यदि स्त्री, मैंने एक को उस दिन देखा हरे बालों के साथ, ये ठीक बात है, उनकी आंखों के नीचे हरी हरी चीज. अब यदि आपके पास कोई बाल नहीं है और आप कुछ पहनना चाहते हैं तो ये ठीक रहेगा, परंतु उसे पहने हुए मनुष्य के समान तो दिखाई दें. अब यदि आपके पास नाखून नहीं है और आप कुछ उंगली के नाखून चाहते हैं, नौसेना की बीन के छिलकों के समान ना लें, वास्तविक नाखून लें. यदि आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो ये ठीक बात है. यदि आपके पास कोई दांत नहीं है तो कुछ ले लें, यदि वे आपको कुछ तो ले लें, परंतु परमेश्वर द्वारा दिए गए दांतों को ना निकालें, क्योंकि वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और वे अच्छे दांत नहीं हैं, तो और ले लें. अपने बालों को ना रंगे या कुछ और, कुछ ऐसे दिखें जैसे कि कहीं कीचड़ में से निकल कर आए हैं. बिल्कुल नहीं. यदि आप रंगहीन हैं और आप ऐसे दिखना चाहते हैं कि आपका रंग है, तो ठीक है, मैं कल्पना करता हूँ,
But don't make yourself look like Jezebel, like a barn somewhere.
परंतु अपने आप को जिजाबेल के समान ना बनाए, जैसे कि कहीं उसे भूसे को रंग दिया गया हो. और आप पेंतेकोस्तल भाइयों, उन स्त्रियों को अपने बाल काटने दो जब बाइबल ने कहा कि वो उसकी शोभा है, और यहाँ तक कि उसके लिए इस प्रकार से कटे हुए बालों के साथ प्रार्थना करना असाधारण है. और तो भी उसे प्रचार मंच पर आने देते हैं और सुसमाचार का प्रचार, गायन मंडली में गाना गाना और संडे स्कूल पढ़ाना. आपके लिए लज्जा की बात है. आपको अपने पे लज्जा आना चाहिए. क्यों मैं संस्था के विरोध में हूँ? आप सोचते हैं कि मैं कभी इस प्रकार के भोजन का प्रबंध करूंगा? मैं जानता हूँ जिस कारण आप करते हैं भाई, आप भली प्रकार से जानते हैं. परंतु यदि आप इसके विरोध में शिक्षा देंगे तो आपको मुख्यालय में भेज दिया जाएगा और वे आपको निकाल देंगे. यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके साहस को आशीषित करेगा. ये ठीक बात है, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा. इस स्वर्गदूत ने क्या कहा? उसमें से बाहर निकलो. जी हाँ श्रीमान, ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर आया और ज्योति लाने के लिए आया, और उसने समस्त संसार में ज्योति चमकाई. वो एक सामर्थी दूत था. वो संदेश की घोषणा करने के लिए आया, बाबुल में से बाहर आ जाओ, उसकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ. उनसे पूरा पिंजड़ा भरा हुआ है. कहा वो स्वयं ही घृणित पक्षियों का पिंजड़ा है. जी हाँ, अब उसके पास उनसे भरा हुआ पिंजड़ा है. विश्व कलीसियाओं की परिषद यानी धर्मशालाएं, उसने सारे झुंड को पिंजड़े में बंद कर लिया है. वे सब एक साथ आ रहे हैं. वो एक पिंजड़ा हो गई है. ठीक है, घृणित पक्षियों से भरा, ये ठीक बात है. इनमें से किसी एक से बात करने का प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करें. लड़के वे संसारी बुद्धि में तेज तरार हैं, परंतु परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानते. उस खरगोश से जो बर्फ के जूतों के विषय में नहीं जानता, ये ठीक बात है. बस यही है. देखिए, वे केवल कुछ बुद्धि की बातें चाहते हैं. वे इसे रख सकते हैं और उसमें वो कर सकते हैं, परंतु जब उसे जानने की बात आती है, वे उसके निश्चित मत के साथ पिंजड़े में बंद हैं. प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने भी यही आरंभ कर दिया है. उसकी पुत्रियां बन गईं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को नकारने के द्वारा है जो वो करती है. वो वचन का इनकार करती है. जब आप परमेश्वर के वचन के बदले में कुछ और स्वीकार करते हैं, ये आप स्वयं उसका इनकार करते हैं. और जब आप इनमें से किसी में सम्मिलित होते हैं, तो आपने भी वचन का इनकार कर दिया. परमेश्वर आपको इस प्रकार नहीं चाहता. इसमें वचन के लिए कोई स्थान नहीं है. ध्यान दें, ये ज्योति का दूत है. स्मरण रखें, अंतिम दूत ये कलीसियाई काल में दूत है लुदिकिया के लिए. ये लुदिकिया का संदेश वाहक है, जो कि ये अंतिम है, क्योंकि अगला ही अध्याय 19वां अध्याय है, जो कि दुल्हन का आगमन है. और ये पवित्र शास्त्र में है कि अंतिम दूत, जिसे दुल्हन के मसीह से मिलने जाने से पहले ज्योति लाना है, ये लुदेशियन कलीसिया काल है. लुदेशियन कलीसिया काल का दूत क्या था? उन्हें बाबुल के बाहर बुला रहा है. देखिए, कलीसियाएं उसके साथ निश्चित मतों के साथ पिंजड़े में बंद हैं, परमेश्वर के वचन का इनकार कर रही हैं और निश्चित मतों को स्वीकार कर रही हैं. ये लुदेशियन कलीसिया के लिए ज्योति का दूत है. कलीसिया जिसने मसीह और उसके वचन को अस्वीकार कर दिया अपने निश्चित मत के लिए और उसे बाहर कर दिया, और वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, अंदर आने का यत्न कर रहा है. देखा इसे, कलीसियाई काल ने मसीह को अस्वीकार कर दिया, और मसीह वचन है, और इसे अस्वीकार कर दिया था, और वो बाहर था. केवल यही कलीसियाई काल है जो हमारा है, जिसमें मसीह बाहर से खटखटा रहा है और अंदर आने का यत्न कर रहा है. और इस दूत का संदेश, दूत परमेश्वर की ओर से आया है. पृथ्वी पर संदेश गूंज रहा था, बाबुल से बाहर निकलो, संस्थाओं से बाहर निकलो. आज पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण ये है कि दूत लोगों को वचन पर वापस लाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल वचन को प्रमाणित कर रहा है. ये निश्चित मतों को प्रमाणित नहीं करता. उनमें कोई जीवन नहीं है. उसका जीवन, ध्यान दें, लुदिकिया कलीसियाई युग ने उसका इनकार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने उसे बाहर कर दिया. ध्यान दें, 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य, ये दूत मसीह के आगमन से पहले का अंतिम दूत है. दूत का शब्द, यदि हम ध्यान दें, जब उसने अपना शब्द पृथ्वी पर दिया, एक आवाज थी जो फिर से स्वर्ग में गूंजी. चौथा पद, यदि आप इसे पढ़ना चाहें, ठीक है, 19वें पद का चौथा पद. ये दूत पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर इतना झुका हुआ था, जब तक कि वो पृथ्वी पर बोला, परमेश्वर ने उसी बात को स्वर्ग पर नहीं गुंजा दिया। चौथे पद का अनुवाद क्या है, इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर की आवाज ने पहले से ठहराए हुए लोगों से बोल रही है, कह रही है उस स्त्री से बाहर निकल आओ। बिल्कुल यही आवाज थी। उसके लोग वहाँ पर हैं, उस सारे बाबुल में होते हुए, उस स्त्री में से बाहर निकलो कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। जी हाँ श्रीमान, उन निश्चित मतों और मतसार से निकलकर वचन निर्मित आत्मा और जीवन। आमीन। ध्यान दें, 19वां अध्याय अगला है। इन बातों के बाद, क्या आपने यहाँ 19वें अध्याय पर ध्यान दिया? इन बातों के बाद देखिए क्या, किसके बाद क्या? उस स्त्री में से बाहर निकलो, इस संदेश के बाद। इन बातों के बाद ध्यान दें, ये दुल्हन के संतों की ललकार है, दूल्हे के साथ मेमने के ब्याह में जा रहे हैं। भाई तो हम कितने समीप हैं, अंतिम पुकार क्या है? बाबुल से बाहर निकलो। अब मेरे भाइयों, यही कारण है कि मैं इसके विरोध में हूँ। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये अकट्टरता है, ये गलत प्रमाणित हो गया है कि परमेश्वर इसमें नहीं है। वो कभी नहीं था, वो कभी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन संस्थाओं में लोग नहीं है, वहीं से कलीसिया बनी है, परंतु जब तक आप उसमें स्थिर हैं, उस तंत्र में आप उसका भाग हैं। यदि मैं संयुक्त राज्य में स्थित हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। जब तक मैं नागरिक हूँ या इस संयुक्त राज्य का सदस्य हूँ, मैं इसका भाग हूँ। यदि मैं जर्मन जाकर और यहाँ की सदस्यता का इनकार करूँ, या मेरी नागरिकता, मैं अपनी नागरिकता जर्मन ले लेता हूँ, तो फिर मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मैं जर्मनी हूँ। और यदि मैं जापान जाऊँ या जहाँ कहीं भी रूस में, मैं वहाँ का नागरिक हो जाता हूँ। और जब आप एक नागरिकता से जुड़ जाते हैं, एक तंत्र से, तो उस तंत्र के नागरिक बन जाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप क्या हैं। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों को इसमें से बाहर बुला रहा है। बाइबल ऐसा कहती है, उसमें से बाहर आ जाओ ताकि तुम उसके साथ सहभागी न बनो, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, उसकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। देखिए, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। समझे? यही कारण है कि मैं कलीसिया, उस धर्मशाला के विरुद्ध बोला हूँ। मैं इसे कलीसिया नहीं कह सकता, केवल एक ही कलीसिया है, वो कलीसिया मसीह की देह है। परंतु ये धर्मशालाएं जो कलीसियाएं कहलाती हैं, मेरी बाइबल मुझे बताती है कि ये सारे ईश निंदा के नाम हैं, सारी संस्थाएं। ये ईश निंदा क्या है? निंदा जो कि भिन्न हो, यानी विरोध में बोलना। जब परमेश्वर कहता है आओ और जन्म लो, और वे कहते हैं आओ और सम्मिलित हो जाओ, समझे? जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को गलत रूप से उस कैथोलिक कलीसिया में पपड़ी का स्थान मिल गया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हाथ मिलाने का, पेंटिकॉस्टल कलीसिया में संवेग को, बजाय इसके मसीह का जन उस पूरे पैरामिड के भवन के साथ अंदर आए जो हमने उस दिन देखा था, अपने विश्वास में सद्गुण बढ़ाओ और आदि आदि, ये सब पहले पत्रस, दूसरे पत्रस में, मेरा विश्वास है पहला अध्याय, जहां ये सब आपके विश्वास में जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें, भक्ति और शुद्धता और पवित्रता और हर चीज, और तब आप पवित्र आत्मा द्वारा मोहर बंद किए जाते हैं। परंतु ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लोग इसका अपने पास होने का दावा करते हैं, जबकि उनके पास नहीं होता, क्योंकि उन्हें गलत शिक्षा दी गई है। मैथडिस्टों को अजीब अनुभूति होती थी और थोड़ा थरथराते थे, या आत्मा में नाचते, पेंटिकॉस्टल अन्य अन्य भाषाओं में बोलते, या भावना में कुछ करते। मैं विश्वास करता हूँ कि वे चीजें निश्चय ही, परंतु वे चीजें बिना इन दूसरी चीजों के कोई लाभ नहीं। जैसा कि मैंने उस दिन कहा, ये मोर के समान है, या काली चिड़िया अपने मोर का पंख लगाने का प्रयास करे, या एक शिकरा पंडुकी का पंख लगाने का प्रयास करे, वे वहाँ कभी भी नहीं बढ़ेंगे। उसने ये अपने में घुसा लिए, वे लगाए गए हैं, वे नामधारी हैं। परंतु जब परमेश्वर कोई चीज लगाता है तो वो स्वाभाविक होती है। आप अपने को बनते हैं और कहते हैं, मैं पिछली रात्रि कलीसिया में सम्मिलित हुआ हूँ, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं अब शराब नहीं पी सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कलीसिया में सम्मिलित हो गया हूँ। देखिए, आप मोर के पंख अपने बाज की मरी देह में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक बात है, समझे समझे। आपको नया जन्म लेना ही है, आपको मसीह को ग्रहण करना ही है, और जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप बिना उसके वचन को ग्रहण किए आप मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो वचन है। और जब आप भक्ति का भेष धरते हैं और उसका इनकार करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, समझे। और आप अब भी सारी संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं जिससे आप चाहें, और भक्ति का भेष धर सकते हैं, और फिर भी ये आपके पास नहीं है। अब मित्रों, तुम यही हो, यही सारी बात है। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं ये मतभेद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये स्वयं की व्याख्या कर रहा हूँ। ये आज आर्मेनियन के दिन है। मैं आप सेवकों के साथ शांति की संधि पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सोचता हूँ आपको मेरे संग आकर हस्ताक्षर करना चाहिए, मेरे साथ नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के साथ। ये ठीक है, ये ठीक बात है। वो ही कहें जो बाइबल कहती है, वैसे ही कहें जैसा वो कहती है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि कौन इसमें से घटाएगा या बढ़ाएगा। आप देखिए, संस्था वचन के अनुसार नहीं है, और जब आप पहला निश्चित मत स्वीकार करते हैं आप पूरी तरह से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आप ठीक वही रेखा पार कर जाते हैं। जब आप नए जन्म पर वापस आते हैं तब आप वचन में चलेंगे। वे कहते हैं आप नामधारी कलीसिया में जाएं। मैं जानता हूँ हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमारा बिशप हमारे आराधनालयों में सिखाते हैं कि हम ही सबसे पुरानी कलीसियाएं हैं, हम नहीं सिखाते। मैं चिंता नहीं करता कि वे क्या नहीं सिखाते। यदि बाइबल ये सिखाती है, पवित्र आत्मा आप में है, वो वचन का भोजन कराएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि मनुष्य कितना तेज है और वो इसकी व्याख्या कैसे करने का प्रयास करता है, वे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक नास्तिक बाइबल लेकर आपको परमेश्वर की व्याख्या आपसे अधिक अच्छी कर सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि सुसमाचार को प्रचार करे, जब तक वो मूसा की नाई वहाँ पीछे उस पवित्र रेत पर जहाँ वो और परमेश्वर अकेले खड़े थे, जब तक मनुष्य का नया जन्म ना हो और परमेश्वर के आमने सामने ना खड़ा हो और जाने, उसमें अविश्वास ना हो, मनोविज्ञान ना हो, कोई व्याख्या ना हो, कोई भी ज्ञानी संसार का आपसे इसे नहीं ले सकता। आप वही थे जब ये घटित हुआ। जी हाँ श्रीमान, आप जानते हैं कि क्या घटित हुआ। तब आप कहते हैं मुझ पर उस प्रकार का अनुभव हुआ और मेरे ऊपर एक आत्मा है, और यदि ये वचन को नकारता है किसी भी प्रकार से तो आप में गलत आत्मा है। आप कहते हैं मैं इस प्रकार की बातों में नहीं जा सकता, मैं जानता हूँ, परंतु हमारी कलीसिया वो गलत आत्मा है। ये प्रमाण का चिन्ह है, केन तुझ पर चिन्ह हो चुका है। जी हाँ श्रीमान, हवा ने केवल एक छोटे से शब्द पर शंका की थी, न कि वो जो सब परमेश्वर ने कहा था, केवल एक छोटा सा शब्द, और ये प्रत्येक हृदय गति के रुकने, हृदय टूटने और मृत्यु और पाप और युद्ध और प्रत्येक चीज, हर कबर, हर रोगी वाहन जो शोर मचाती है, हर अस्पताल जो बीमारों के लिए बने हैं, उसका कारण हुआ। उसका एक छोटे से परमेश्वर के वचन पर छोटी सी शंका इस सब का कारण हुई, और वो बाहर निकाल दी गई, जबकि ये कभी नहीं होना था। इसके एक वचन पर शंका या अविश्वास करके आप कैसे अंदर जा सकते हैं? कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये कहता है, परंतु ये इसका केवल ये अर्थ होता है। अब देखिए, परमेश्वर को किसी चीज के द्वारा संसार का न्याय करना है। आपका न्याय हो ही नहीं सकता जब तक कि पहले आपके पास व्यवस्था ना हो। वहाँ कुछ तो होना चाहिए, आपको तोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ताकि न्याय हो सके, समझे। और नहीं तो कोई न्याय ठीक नहीं हो सकता बिना किसी दंड के। अब देखिए, आपके पास नगर में ऐसा कानून नहीं हो सकता जो कहे लाल बत्ती को पार करने पर $5 का जुर्माना होगा, और अगला कानून कहे नहीं, वो स्वतंत्रता से जा सकता है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए एक समय में दो कानून अस्तित्व में नहीं रह सकते, और एक व्यवस्था है, एक परमेश्वर है, एक पुस्तक, एक मसीह, बस एक विश्वास, एक आशा, बस यही सब। ये बाइबल मसीह है। अब ध्यान दें, इसमें यदि इसमें कुछ मिलाया जाए तो ये मनुष्य के द्वारा मिलाया जाना चाहिए, ये इससे अधिक नहीं हो सकता। अब जैसा कि कैथोलिक कहते हैं कि परमेश्वर संसार का न्याय कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है, तो फिर कौन से कैथोलिक कलीसिया के द्वारा वो न्याय करने जा रहा है? उनमें बहुत सारे हैं, उनमें एक रोमन, एक यूनानी, और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कौन सी कैथोलिक कलीसिया के द्वारा वो न्याय करेगा? यह हो सकता है वो लूथरन के द्वारा न्याय करने जा रहा हो, तो ठीक है, और हो सकता है वो प्रेस्बिटेरियन के द्वारा न्याय करने जाए, समझे। वो क्या करने जा रहा है? वो कलीसिया के द्वारा न्याय करने नहीं जा रहा, वो अपने वचन के द्वारा न्याय करने जा रहा है। तो फिर वो कभी नहीं, देखिए, वो लोगों के झुंड को इस प्रकार नहीं रख सकता जैसे उस रात्रि बहन का दर्शन था। पवित्र आत्मा ने ये अंदर उंडेला, ये उस बॉक्स में से होता हुआ निकल गया, निश्चय ही कोई उसे नहीं पकड़ सकता। ये व्यक्तिगत है, ये कलीसिया को शुद्ध होने के लिए देता है, परंतु ये इसे थामे नहीं रह सकता, कोई संस्था इसे नहीं पकड़ सकती। बस यही है, ये इसे कर ही नहीं सकता। वहाँ आपके पास सब कुछ है और आप इसे नहीं कर सकते, संस्था इसे नहीं कर सकती, परंतु ये वो व्यक्ति है जिसके पास पवित्र आत्मा है। अब ध्यान दें, तब यदि परमेश्वर संसार का न्याय अपने वचन के द्वारा करने जा रहा है, तो फिर निश्चित तौर से वो इसका ध्यान रखता है और उसी स्थिति में रखता है। या यदि ये सब धर्म संकोच है, तो फिर वो न्याय कैसे ला सकता है? समझे, इसमें कुछ तो होना ही चाहिए। और उसने कभी नहीं कहा जो कोई भी कलीसिया के द्वारा, उसने कहा जो कोई भी एक शब्द इसमें से निकाले या इसमें मिलाए, वही उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे लिए ये परमेश्वर का उसका वचन और न्याय। अब यदि मैं न्याय और उसका वचन स्वीकार करूं और देखूं कि मसीह मेरे कारण मरा, तो मैं उसके जीवन को मांगूंगा कि आकर मेरा मार्गदर्शन करे। और यदि उसका जीवन वचन है और उसने वचन लिखा, तो कैसे उसका जीवन मुझ में हो सकता है और मैं दावा करूं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है और बजाय उसके वचन में उसमें निश्चित मत मिलाऊं? वो काम नहीं करेगा। मैं कैसे नामधारी कलीसिया मिला सकता हूँ जबकि वो इसके विरोध में है और ये सिद्ध करता है और इतिहास में होते हुए दर्शाता है कि हर बार वे नामधारी हुए और आत्मिक रूप से मर गए। निश्चय ही वे सदस्य बढ़ाते हैं, ये ठीक बात है, वे सदस्य बढ़ाते हैं, परंतु आत्मिक रूप से कभी नहीं बढ़ते। मुझे दिखाएं, मुझे इतिहास में दिखाएं कि कहीं भी कोई कलीसिया जो संस्थागत होने के पश्चात वो वहीं मृत हो गई और पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया, वहाँ कोई चमत्कार और चिन्ह नहीं हुए और वो सीधे सीधे गड़बड़ी में चली गई। हमारी पेंतेकोस्तर कलीसियाओं के साथ ठीक यही हुआ, उन्होंने भी ठीक वही किया जो उनकी माँ ने किया। आरंभ में वे बाहर निकल कर आए, वे लोग जिन्होंने नामधारी कलीसियाओं को अस्वीकार किया। अब आप में से कुछ भाई लोग इस टेप को सुन रहे हैं, आप में से कुछ पुराने लोग जानते हैं कि वर्षों पहले, 40-50 वर्ष पहले, यदि वे आपसे संस्था के विषय में बात करते तो आप कहते ये निंदा थी, परंतु आज आप उसी चीज से संबंधित हैं जिसे आप निंदा सोचा करते थे। आप महिलाएं जो बाल कटवाती हैं और अपने मुख रंगती हैं, आपकी माँ इसके विरोध में थी, वे भले पुराने पेंतेकोस्तल संत, आप लोगों को क्या हो गया? पौलुस ने कहा तुम तो भली प्रकार से दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? समझे, पहले तुम इन चीजों से स्वतंत्र थे, परंतु तुम औरों के समान होना चाहते हो। ठीक वही जो शमूएल ने कहा, इसराइल के पास राजा था और वो परमेश्वर था, और उन्होंने कहा शमूएल तू बूढ़ा हो रहा है, हमारे लिए एक राजा बना दे, हम संसार में औरों के समान होना चाहते हैं, हम दूसरे राष्ट्रों के समान होना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक राजा हमें युद्ध पर ले जाए, हम एक राजा चाहते हैं जो हमारे युद्ध लड़ सके। और ये शमूएल को बुरा लगा, उसने कहा क्या मैंने तुमसे कोई वस्तु ली? क्या मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे लिए? क्या मैंने कभी बैल या कोई चीज मांगी? क्या मैंने तुमसे कभी कोई चीज मांगी? उन्होंने कहा नहीं, तूने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। या कहता है क्या मैंने कोई बात प्रभु के नाम से बोली परंतु वो जो पूरी ना हुई हो? क्या ये ठीक बात है? उसने कहा तो फिर राजा मत लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए गड़बड़ी का साधन होगा। अब ब्रैनम आराधनालय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने अब बड़ा आराधनालय बनाने के लिए तय किया है, हो सकता है मैं कुछ समय के लिए अलग चला जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, ये बताना कठिन है प्रभु मुझे कहाँ बुलाएगा। हो सकता है दृश्य से हटा दे, हो सकता है वापस कार्य क्षेत्र में, हो सकता है वो मुझे जंगल में बुलाए, मैं नहीं जानता। वो मुझे जब तक यीशु नहीं आता कहाँ बुलाए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? Did I ever beg you for money? क्या मैंने आपसे कभी पैसे मांगे? Did I ever tell you? क्या मैंने हजारों बातों में से कुछ ऐसा बताया जो मैंने प्रभु के नाम से बताया हो और वो घटित नहीं हुआ हो? तो फिर संस्था के सदस्य कभी नहीं बनना, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। इसमें से निकल आओ यदि तुम इसमें हो और अलग हो जाओ और प्रभु के वचन को ग्रहण करो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। भविष्यद्वक्ताओं का महान परमेश्वर, अब्राहम, इजाक और इसराइल के परमेश्वर, सद्गुण को प्रभु मिला दे इस संदेश के छोटे टुकड़े में, जो कि मेरे हृदय में एक लंबे समय से था कि ये मेरे भाइयों के पास जाए। प्रभु, बहुत से लोग जो बाहर हैं, उन पर मेरा ये प्रभाव है, वे सोचते हैं मैं मतभेद रखना चाहता हूँ। वे सोचते हैं कि मैं ये दिखाने का यत्न कर रहा हूँ कि मैं ये सब जानता हूँ। उन्होंने लोगों को बताया कि मैं लोगों को धोखा देता हूँ, विशेषकर ऐसे विषयों पर जैसे पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में, और सर्पवंश पर, बड़ी वेश्या, और बहुत सारे वे टेप जो बाहर गए हैं, जो कोरे सत्य को छोड़ और कुछ नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उनमें से कोई मुझे आकर ये दिखाए कि मैंने कहां पाप किया या अविश्वास या वचन का गलत अनुवाद किया है, और किसी ने नहीं दिखाया। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग जान सकें कि ये लोग इस घड़ी से चूक न जाएं। वे बहुत ही देर बाद प्रतीक्षा करने जा रहे हैं। यदि वे ना ध्यान दें, होने दें कि प्रत्येक, प्रभु मैं इस बात में निश्चित हूँ, मेरा हृदय टूट जाएगा यदि ये पवित्र शास्त्र मेरे लिए वास्तविक नहीं होता। जब आपने कहा वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, तब प्रभु मैं अनुमान लगाता हूँ कि राज्य सच में ऐसा है जैसा आपने कहा है। मैं जानता हूँ कि ये है, ये उस मनुष्य के समान है जो जाल लेकर गया और झील में जाल डाला और हर प्रकार की चीजें खींच लाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि गंदा खाने वाली मछली, वहाँ कछुए थे, पानी के केकड़े, सांप, हर चीज जो सुसमाचार के जाल ने पकड़ी। परंतु अंततः धीरे धीरे कर्क मछली फिर से पानी में वापस चली गई, कछुआ अलग हो गया, सांप ने फुंकार मारी और वापस मिट्टी के भट में चला गया, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर या सूअरनी अपनी कीचड़ में। परंतु प्रभु, वहाँ एक वास्तविक मछली थी, और मुझे ये स्वांतना है, ये जानते हुए इससे पहले कि जाल उन पर फेंका जाता, वे तब भी मछली थीं, वे पहले से मछली ठहराई जाकर उत्पन्न हुई थीं। और ऐसा ही ये सुसमाचार का जाल है जो कि इन बेदारियों में पकड़ता है। आप अपने आप से जानते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं केवल इस बात के लिए उत्तरदायी हूँ पिता, कि इस वचन के प्रति सच्चा रहूँ। आप ही हैं जो निर्णय करते हैं कि कौन क्या है, और मैं इससे अधिक नहीं जानता कि कछुआ शेर मछली नहीं हो सकती। इसी प्रकार से एक मनुष्य या एक व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके पास सुसमाचार के लिए बहरे कान कि वो कभी सत्य को समझ सके, क्योंकि पिता ने ये पहले से देखा है और आपने ये प्रतिज्ञा की है, वो सब जो उसने आपको दिया है आएगा। स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस छोटे संदेश को सुनता है, कि वो ज्योति जो यहाँ प्रचारी गई और जिसका अर्थ जो मेरे हृदय में मेरे संगी लोगों के लिए था, लोगों जो तुम्हारे लिए मर गए, और पुरुष उनमें से जो वहाँ है कोरा के झुंड के समान, वास्तविक मनुष्य, गलत रीति से जिनका मार्गदर्शन किया गया, पवित्र धूप के साथ जो उनके हाथों में है परंतु नाश हो गए, क्यों वे धूप की अग्नि को उनके साथ नहीं जाने देते? हारून के पुत्र एलियाजार को उसे समेटना पड़ा, और उन्होंने वेदी के लिए एक पताका बनाया, उन केतलियों और ढालों में से एक स्मृति चिन्ह बनाया, उस भयानक बात के लिए कि कोरा ने एक संस्थागत झुंड बनाने का यत्न किया था परमेश्वर उस दूत के विरोध में। ये बात हमसे दूर रहे प्रभु, होने दे कि पवित्र आत्मा सदा हमारी रक्षा करे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कलीसिया, ये छोटा पवित्र आराधनालय, बहुत वर्षों पहले, लगभग 30 वर्ष पहले, मैंने यहाँ इस तालाब में जो सीलन और लंबी घास से भरा हुआ था अपने घुटने टेके थे, और हमने ये भूमि आपको समर्पित की थी, ये छोटी सी बनावट, और सामने इस आराधनालय के कोने में वो दर्शन रखा है जो कि ठीक वैसे ही घटित हुआ और अब भी वहाँ है। प्रभु, वे इसे तोड़ना नहीं जा रहे हैं, वे केवल ये पुराना हो रहा है, और वे इस पर छत डालकर इसे सुरक्षित करने जा रहे हैं। परमेश्वर इस सुनहरे सुसमाचार को प्रदान करें जो कि यहाँ इन पन्नों में लिखा हुआ है। होने दे कि ये इस छोटी सी कलीसिया को कभी ना छोड़े जब तक मसीह नहीं आता। होने दे कि प्रत्येक सदस्य, मसीह की देह का प्रत्येक सदस्य, वे यहाँ राष्ट्र के दूसरे छोर से और समस्त संसार से आते हैं। ऐसा हो कि उनमें से प्रत्येक ज्योति को स्वीकार करे वो सुसमाचार और तब उसका पालन करे और मसीह को ग्रहण करे। और ये इतना वास्तविक हो कि उसका वचन घटित हो, जो कार्य मैं करता हूँ वे भी करेंगे। वो जो मेरे वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। और जब अनंत जीवन भीतर आता है तो वे ऊपर से जन्म लेते हैं और परमेश्वर की ओर से कार्य अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि ये वही जीवन है जो उसमें था, ये और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पिता, ये कलीसिया अनंत लक्ष्य संवेदन पर, एक संस्था पर, किसी भी चीज पर न रुकें जब तक मसीह स्वयं उनमें न रह रहा हो। तब तक कभी विश्राम न करें, अपने वचन को उनके अंदर से होते हुए प्रमाणित करें और अपनी प्रतिज्ञा होने दे कि आज रात्रि सबसे छोटा बालक और बूढ़े व्यक्ति, जब तक वे इस अनुभव को प्राप्त न कर लें, और होने दे कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की जो इस टेप को सुने, उनके साथ भी ऐसा ही हो प्रभु, और उन्हें समझा दें कि मैं केवल चेतावनी देने और इस घड़ी में बाहर बुलाने, जो हमारे सोचने से पहले हो जाएगा, यत्न कर रहा हूँ। और हम देखते हैं बाबुल वेश्याओं की माता और उसकी सारी वेश्या पुत्रियाँ, उन्होंने अपने आप को एक साथ संगठित कर लिया है। परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है गेहूं के खेत में से भूसा पहले गठरों में बांधा जाए, और वे गठरों में बंध गए हैं और स्वयं को निंदा के नाम कहलवा रहे हैं, जो कि वास्तव में उनका भाग नहीं है। ये ना ही कलीसिया से संबंधित नहीं है, ये धर्मशालाएं ठहरने के स्थान हैं, कलीसियाएं नहीं। पिता, उनमें से केवल एक ही है और वो जिसके लिए आप मरे। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि हम उनके गठर बनते देख रहे हैं, बहुत जल्द ही उस परमाणु वाली आग के लिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप गेहूं को पूरा भरा और भारी कर देंगे। प्रभु इसे प्रदान करें। होने दे कि हम बढ़ें और ज्योति चमकाएं और यीशु के समान हो जाएं। यदि मैं वो कार्य ना करूं जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहता है, तो फिर मुझ में जीवन नहीं। परंतु यदि परमेश्वर बोलता और अपना जीवन दर्शाता है, तो वो स्वयं ही बोलता है। प्रभु इसे प्रदान करें। मैं ये संदेश आपको समर्पित करता हूँ, और कि आप इस पर दृष्टि रखें और हजारों को ले आएं, प्रभु, या वे सारे पहले से ठहराए हुए तेरे बालक सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह जो कि जीवन है, उसके नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
Salvation on Calvary Street।
मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आज रात्रि कितने इस दिखने वाली मंडली में, यहाँ इस बड़ी कलीसिया के अच्छे लोग, या बल्कि घराने के लोग, इस आराधना स्थल में जो अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की मांग के साथ नापा गया है और बाइबल के साथ, और आप विश्वास करते हैं अपने जीवन को देखने के द्वारा और आप में आत्मा के हलचल के तरीके से कि हर वचन को जिस प्रकार ये लिखा है ये विश्वास करता है और उसे बनाए रखता है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे, उसका आत्मा सदा आपके ऊपर बना रहे। और मेरे मित्र, टेप पर मेरी इच्छा है कि आप आज रात्रि इस सभा में देख पाते। मेरा अनुमान है उनके लगभग 90% हाथ ऊपर उठे हुए हैं, और उन्होंने विश्वास किया है और बाइबल पर ध्यान से दृष्टि डाली है, ना कि जो कलीसिया कहती है, जो बाइबल कहती है, ना कि जो धर्मशालाएं कहती हैं, जो बाइबल कहती है, और वे इसमें मसीह के जीवन को प्रतिबिंबित होते देखते हैं। आप जानते हैं पुराने दिनों में इससे पहले कि उनके यहाँ गलाने वाले थे, सुनहार सोने को हथौड़े से पीटा करता था। मैं समझता हूँ आपने ये सुना होगा, इससे पहले गलाने वालों के पास जाता वे इसे पीटा करते थे। और सोना सबसे भारी वस्तु होता है, ये लेड से भी भारी होता है। और इसलिए मैंने भी पूर्वेक्षण किया है और रेगिस्तान से थोड़ी धुली हुई रेत ले सकते हैं और अपना हाथ रेत पर रगड़ें और इस प्रकार फूंक कर उसे उड़ा दें और धूल आदि सब उड़ जाएगी, कंकड़ियां भी। परंतु सोना इतना भारी होता है कि वो वहीं रहता है। और तब जब आप उस सोने को लेते हैं, ये बहुत सारी धूल के साथ लिपटा होता है, यहाँ तक कि बहुत धूल जमी रहती है। और ज्वालामुखी युगों में ये जमा हो गया था, ये कीचड़ युक्त हो गया और हर चीज, कच्चा लोहा और दूसरी चीजें इसके साथ मिल गईं। पीटने वाला इस सोने की लुगदी को लिया करता था, इसे पीटता और घुमाता और इसे पीटता और घुमाता, जब तक वो सारा धातु मल इसमें से बाहर ना निकाल देता। और आप जानते हैं कि वो कैसे जान पाता था कि सारा धातु मल बाहर निकल गया है? वो स्वयं अपनी सूरत उसमें परिवर्तित होते हुए देख सके। और इसी प्रकार से परमेश्वर कलीसिया के साथ करता है। वो हर मत, जात, हर नामधारी, हर मनुष्य द्वारा बनाया गया निश्चित मत पीट पीट कर बाहर निकाल देता है, और जब तक अपना जीवन उसमें से प्रतिबिंबित होते हुए आप में से नहीं देख लेता। यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं, मेरा विश्वास मत करो, समझे? कलीसिया का उद्देश्य क्या है? यदि वो जीवन जो मसीह में था आप में से प्रतिबिंबित ना हो, आप शांत ना रहें। यदि आप में धैर्य नहीं है, सद्गुण और वो सारी बातें और संयम और चीजें और भक्ति, भाईचारे की प्रीति और ये सारी बातें जिनकी आपको आवश्यकता है ना हो, इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या किया है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना चिल्लाए हैं, आप कितनी कलीसियाओं में सम्मिलित हुए हैं, आपने अपने में कितने पंख लगा रखे हैं, ये काम नहीं करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए जब तक वास्तविक आपके हृदय से आप क्षमा कर सकते हैं, जब तक आपके हृदय में भाईचारा ना हो। कोई बात नहीं, यदि वे मुट्ठी भर के आपकी दाढ़ी एक ओर से नोच लें, आप प्रसन्नता से अपना दूसरा गाल भी फेर दें। देखिए, जब तक वे सद्गुण आप में ना हो, इससे कोई मतलब नहीं वे आपसे क्या कहते हैं। जब उन्होंने उसके मुख पर कपड़ा ढांक कर और उसके सिर पर मारा और कहा, वे मुझसे कहते हैं वो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता है, अब उसके मुख पर से कपड़ा हटाकर और उनमें से एक छड़ी पकड़े हुए कहता है, हम में से किसने तुझे मारा, भविष्यवाणी करके हमें बता, तब हम तेरा विश्वास करेंगे कि तू भविष्यद्वक्ता है। उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। जब आप सुनो कि भविष्यद्वक्ता उठ रहा है जिसके पास हर पहेली का उत्तर हो जो आप ला सकते हैं, स्मरण रखें, वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। आज उन्हें सब मालूम होना चाहिए, आपके दांत में कब दर्द होने वाला है और आपके पेट में दर्द होने वाला है और हर बात, और आपको सब इस विषय में बता दे। हमारे परमेश्वर का ये स्वभाव नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं पर ध्यान दें, यीशु पर ध्यान दें। पौलुस को देखें, जब वो एक मनुष्य को अंधा कर सका और तांबे के कारीगर ने उसे उस देश से बाहर निकाल दिया, मेरा अनुमान है कि वो अपनी अंधा करने वाली सामर्थ को खो चुका। यीशु जो मरे हुए को जीवित कर सकता था और तब भी पियकड़ कहलाने वाले सिपाही ने उसके मुख पर थूका और खकारा और थूका, उसके मुख पर से दाढ़ी नोची और उसके सिर पर मारा, उसके सिर पर कपड़ा बांधा और कहा, भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा, और उसने अपना मुंह ना खोला। इन सब नकल करने वाले काम करने वालों को ना देखें, परंतु स्मरण रखें, वे केवल बोल रहे थे। एक नकली डॉलर केवल ये बोलता है कि कहीं वास्तविक डॉलर है। जब आप ये संस्था के मामले बढ़ते देखें और फलते फूलते, जैसे कि ये कहा गया है कि धूर्त उसके हाथों में फले फूलेंगे, केवल स्मरण रखें कि कहीं परमेश्वर की छोटी कलीसिया है, वास्तविक पवित्र आत्मा से भरी एक मूल जो सीढ़ी चढ़ रही है। बड़े बड़े नामधारियों की ओर ना देखें। बाइबल में इफिसियों की कलीसिया काल से बड़ी कौन सी कलीसिया काल के विषय में बोला गया? और जब पौलुस इफिसुस के ऊपर के भाग से होकर और इस कलीसिया में आया तो वहाँ 12 पुरुष थे, ये ठीक बात है, और वे सब भले लोग थे, चिल्लाए और एक महान समय था, परंतु तब भी पवित्र आत्मा नहीं पाया था। पौलुस ने कहा, तुमने जब से विश्वास किया है पवित्र आत्मा नहीं पाया? उन्होंने कहा, क्यों, हम नहीं जानते कि कोई पवित्र आत्मा था। उसने कहा, तो फिर तुमने कैसा बपतिस्मा लिया था? यदि इसमें कोई अंतर नहीं, उसने वहाँ की कलीसिया से क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही एक महान व्यक्ति से बपतिस्मा तो ले लिया जो कभी इस पृथ्वी पर था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने हमारे प्रभु को भी बपतिस्मा दिया। क्या ये बपतिस्मा काफी नहीं है? उसने कहा, नहीं श्रीमान, तुम्हें फिर बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि राज्य किसी और चीज से मोहर बंद हो गया है। और जब उन्होंने ये सुना कहा यूहन्ना का बपतिस्मा केवल प्रायश्चित का था, पापों को मिटाने का नहीं। ये कह रहा था कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो आने वाला है, ये इस यीशु पर। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। ठीक, बिल्कुल सही, उन्होंने पवित्र वचन का पालन किया। आप जानते हैं इस प्रातः के समर्पण में मूसा ने उसी नमूने का अनुकरण किया जो उसने स्वर्ग में देखा, और उसके प्रतिनिधित्व में एक तंबू गाड़ा। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसने क्या किया? मूसा के नमूने का पालन किया उस तंबू के द्वारा जो पवित्र वचन को एक रेखा में रखता है। और जब परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने मंदिर में आया, इस मंदिर में पवित्र आत्मा के, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। पवित्र आत्मा पेंतेकोस्तल के दिन में गिरा और संदेश था, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उनके लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। यदि आप अपने सेवक को डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर शमौन पत्रस ने ये नुस्खा लिखा, एक अनंत नुस्खा, यही जो बीमारों को चंगा करता है। इन नकली दवा विक्रेताओं को नामधारी द्वारा प्रयास करने दो कि किसी भी प्रकार से भर दें। यही कारण है उन्होंने, आप जानते हैं, यदि आप नहीं बढ़ाते हैं, आपने नुस्खे में बहुत अधिक मिला दिया। आप कर सकते हैं, अधिक विष मिलाएं और अपने रोगी को मार डालें। यदि आप उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं डालेंगे, दवाई के विरुद्ध नहीं, तो ये आपके रोगी को कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। आपका डॉक्टर जानता है कि नुस्खा कैसे लिखना है, और मसीह पवित्र आत्मा नुस्खे लिखने वाला है, और उसने ये लिखा, इसमें ना मिलाएं या निकालें, दवा को वैसे ही लें जैसी वो है। ये सारे रोगों का इलाज है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन।
Just my salvation.
अब जब हम इसे गुनगुना रहे हैं तो घूमकर अपने पड़ोसी से वही हाथ मिलाएं। ओ, वो भी एक तीर्थ यात्री है, निकल रहा है। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और अपनी आवाज परमेश्वर को। अब जैसे कि मैं आपको पादरी को समर्पित करता हूं, हम यहां आपको पाकर प्रसन्न हैं। हम नामधारी नहीं हैं, हमारे पास कोई कानून नहीं है, केवल प्रेम है। कोई सार मत नहीं, केवल मसीह। कोई पुस्तक नहीं, केवल बाइबल। कोई सदस्यता नहीं, केवल संगति यीशु मसीह के लहू में होते हुए, जो हमें सारे अविश्वास से शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। वापस आकर हमसे फिर मिलें। क्योंकि उसने पहले प्रेम किया। ठीक है पास्टर, भाइयों परमेश्वर आपको आशीष दे।